हरे कृष्णा। तो आज श्रीमद् भागवत पुराण के बारे में हम संक्षिप्त में सुनेंगे। भागवत पुराण की अधिक महिमा है, तो जो ये भागवत पुराण है सभी ग्रंथों में से सर्वश्रेष्ठ है, तो इसलिए श्रीमद् भागवत पुराण को निरंतर रोज इसका अध्ययन, रोज इसका श्रवण करना चाहिए। तो हम इस्कॉन द्वारका सेक्टर 13 से आए हैं, जहां पर रोज निरंतर भगवान के भागवत कथाओं का श्रवण सुबह किया जाता है। तो अभी हम मंगलाचरण करेंगे और भक्त यहां पर भगवान की अगरबत्ती दिया जला सकते हैं, वैसे तो जल रहा है, अगरबत्ती लगा सकते हैं इसमें, और मंगलाचरण हम करेंगे भगवान का। सर्वज्ञ प्रभु इसमें बैग में है, यहां से ले सकते हैं। सभी लोग हाथ जोड़िए और बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। तो इसमें, इस प्रार्थना में हमने सरस्वती माता का स्मरण किया है और भगवान नारायण का स्मरण किया है, और इस स्मरण करने से क्या होता है कि सदा ही हमारी विजय होती है। आप जिस भी क्षेत्र में जाएंगे उस क्षेत्र में क्या होगी, आपकी जय होगी। इसीलिए बोलते हैं नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैवम नरोत्तमम देवम सरस्वतीम व्यासम ततो जयम उदीरये, है ना। तो हमारी सदा ही जय होती है। अब हम इसके आगे के सभी मंगलाचरण को क्रम में पढ़ते जाएंगे, और जो जानते हैं वो दोहरा सकते हैं, अन्यथा जो नहीं जानते हैं वो हाथ जोड़ सकते हैं। मंगलाचरण है भगवान का, इसको स्मरण करने से, श्रवण करने से सदा ही मंगल होता है हमारे जीवन में, है। इसके लिए इसका नाम है मंगल आचरण, मंगलाचरण। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवते नष्टके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमः पंकजांग्रहे। तो हम इसमें नमः पंकजनाभाय, वो भगवान जिनकी नाभि से पूरी सृष्टि का रचना होता है, नभ पंकज नाभाय कमल के जैसी जिनकी नाभि है, कमल के जैसे जिनके नेत्र हैं, वो कौन है, भगवान कृष्ण। कृष्णस्तु भगवान स्वयं एते चान सकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रिया हरि व्याकुलं लोके मृणयन्ति युगे युगे। इंद्र के दुश्मन को वध करने के लिए इंद्र देवी देवताओं के जो अग्रणी हैं, सभी देवताओं के जो लीडर हैं इंद्र, उनकी रक्षा करने के लिए कौन आते हैं? भगवान कृष्ण। इंद्रयारी व्याकुलम लोके मृणयन्ति युगे युगे, हर युग युग में भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं। एते चान सकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इंद्रयारि व्याकुलम लोके मृणयन्ति युगे युगे, हर युग युग में भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं। तो भगवान कृष्ण के स्वधाम चले जाने के बाद में, जब भगवान कृष्ण द्वापर युग की अपनी लीलाएं समाप्त करके यहाँ से जाते हैं, तो भगवान किस रूप में इस कलयुग के जीवों के लिए प्रकट हैं? तो विदुर जी प्रश्न पूछते हैं, भगवान कृष्ण जब आप चले जाएंगे तो कैसे आपकी प्रवृत्ति, आपकी प्रकृति, ये जो कलयुग है इसके अंदर कैसे भक्त आपका दर्शन करेंगे? तो भगवान बता रहे हैं, कृष्ण सुधाम उपागते धर्म ज्ञान आदि भी सहा कलो नगदशम एवा पुराणो अर्को अधो ना उदितः। भगवान ने कहा कि जब भगवान धाम धरा धाम गोलोक धाम चले जाएंगे तो श्रीमद् भागवत पुराण के रूप में जो भगवान कृष्ण हैं वो प्रकट होंगे। तो आज श्री भागवत पुराण कथा के लिए कौन प्रकट हुए हैं? स्वयं भगवान कृष्ण प्रकट हुए हैं। कहते हैं कि भागवत जो है वो सभी पुराणों में श्रेष्ठ है, चाहे शिव पुराण हो, कुर्मा पुराण हो, विष्णु पुराण हो, पद्म पुराण हो, सभी पुराणों में से क्या है? श्रेष्ठ हो जाता है। कैसे श्रेष्ठ होता है? जिस प्रकार से नदियों में कौन सी गंगा सबसे श्रेष्ठ है, जिस तरह से देवताओं में भगवान कृष्ण सबसे श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार से शास्त्रों में सबसे श्रेष्ठ है श्रीमद् भागवतम पुराण। और जितने भी वैष्णव हैं, वैष्णव वो जो भगवान कृष्ण का भजन करते हैं, उनमें से सबसे उत्तम जो है वो कौन है बता सकते हैं? कौन है? भगवान शिव। इसीलिए ये शिव मंदिर में कथा आयोजन की गई है। तो आप लोगों का भोले बाबा की सावन में बड़ी कृपा हुई है, जो कि आपको कृष्ण कथा सुनने का मौका मिल रहा है ना। कहते हैं, निम्न गणाम यथाम गंगा, निम्न गणाम यथाम गंगा, देवानाम अच्युतो तदा, वैष्णवानाम यथाम शंभो, पुराणानाम इदं तथा। जिस प्रकार से निम्न गणाम यथाम गंगा, जितनी भी बहने वाली नदियां हैं उनमें से सबसे श्रेष्ठ कौन सी है? गंगा। उसी प्रकार से सभी के सभी देवताओं में देवानाम अच्युतो यथा, अच्युत भगवान वो हैं जिनका भजन करने वाला कभी जीवन में हारता नहीं है। क्या नहीं करता है? हारता नहीं है। तो आप लोग हारना चाहते हैं या जीतना चाहते हैं जीवन में? जीतना चाहते हैं। तो जो जीतना चाहते हैं उनको किसका भजन करना चाहिए? देवानाम अच्युतो यथा, अच्युत भगवान का भजन करना चाहिए। अच्युत शब्द का अर्थ होता है जो कभी हारते नहीं है, और उनका भजन करने वाला भी कभी हारता नहीं है। और इसी प्रकार से वैष्णवानाम यथाम शंभु, वैष्णवों में भजन करने वाले कौन है? शिवजी हैं। शिवजी से पार्वती पूछती हैं कि हे भोलेनाथ, हम जब भी आपका चित्र देखते हैं आप हमेशा एक माला लेकर जप करते हैं, तो आप किसका जप करते हैं? तो पार्वती को शिवजी कहते हैं, सुनो उमा ये अनुभव अपना, सुनो उमा ये अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। बोलिए, सुनो उमा ये अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो इस संसार में अगर कुछ है तो सुनो उमा ये अनुभव अपना, ये मेरा अनुभव है कि संसार में सत हरि भजन जगत सब सपना। तो कोई अगर शिवजी को प्रसन्न करना चाहता है तो क्या बोलना चाहिए?
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
तो ये शिव जी का मत है। ऐसे अनेकों प्रकार की संप्रदाय हैं, जैसे वैष्णव संप्रदाय है, हमारी संप्रदाय जिससे हम हैं इसको बोलते हैं ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। अगर आप सच में किसी से भक्ति सीखना चाहते हैं तो आप जाइए और लोगों से पूछिए कि गुरुजी आपके गुरुजी का नाम क्या है, तो गुरुजी को अपने गुरुजी का नाम मालूम नहीं होता है। तो इस प्रकार से जिस गुरुजी को गुरुजी का नाम नहीं मालूम है तो वो गुरु कैसे हुआ। गुरु वो है जो परंपरा में आता है। तो जो परंपरा जिसे इस्कॉन मंदिर आता है इसको बोलते हैं ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु आते हैं, स्वयं भगवान चैतन्य प्रकट होते हैं और वो आकर के सभी भक्तों को हरिनाम संकीर्तन देते हैं और कहते हैं इस कलयुग में अगर अपने जीवन को कलयुग के कलमश से बचाना चाहते हो तो बस एक ही चीज करो, क्या? हरिनाम करो। आज जगह जगह पंडालों में भागवत कथा होती है, आप जाएंगे बहुत बड़े बड़े पोस्टर होते हैं, 7 दिनों तक भागवत महिमा भागवत का भजन गाया जाता है, परंतु कोई ये नहीं बताता कि भागवत महिमा के बाद में अंत में भागवत के 12वें स्कंद में क्या वर्णन है। भागवत के 12वें स्कंद में इसी का वर्णन है कि किस प्रकार से एक व्यक्ति को भगवान कृष्ण का भजन करना चाहिए। परीक्षित महाराज जो थे उन्होंने सुखदेव गोस्वामी महाराज से पहला प्रश्न पूछा कि जो व्यक्ति मरणासन हो, मरने के लिए जिसका समय आ गया उसको क्या करना चाहिए, और जो व्यक्ति की अभी मृत्यु न आई हो उसको क्या करना चाहिए। तो आप में से ऐसा कौन है जो ये कह सकता है मेरी मृत्यु अभी नहीं आई है? कोई कह सकता है? कल का क्या भरोसा, उठ जाए। तो ऐसे व्यक्ति में जब कोई यही नहीं कह सकता कि मेरी मृत्यु कब है, इसलिए परीक्षित महाराज ने सभी जीव जंतुओं के लिए प्रश्न पूछा कि जो मरणासन है, जो मरने के लिए तैयार है, उसका धर्म क्या है। मरणासन मतलब मरने के लिए जो तैयार है। हमारे इस शरीर का एक और नाम है, उसका नाम है मरण धर्मा। क्या नाम है? जो बना ही मरने के लिए है, इसका नाम है मरण धर्मा। तो ये शरीर कई प्रकार के बचपन से बुढ़ापे तक 6 प्रकार के बदलावों में जाता है। पहले बच्चा होता है, फिर थोड़ा जवान होता है, फिर शादी विवाह होता है, फिर पुनः अपने बच्चे उत्पन्न करता है, और बुढ़ापा आने पर जब बूढ़ा हो जाता है जर्जर शरीर, तो दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो इस प्रकार से भगवद गीता में वर्णन है, देहो आस्मिनिम यथा देहम कौमरम यौवनम जरहा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र नामुयति। कौमरम यौवनम जरा, पहले कौमर अवस्था में, फिर यौवन अवस्था में, और फिर बुढ़ापे की अवस्था में जाता है। लेकिन जो धीर पुरुष है, समझदार है, वो क्या करता है, वो किसी भी प्रकार के इस आसक्ति संसार में आसक्त नहीं होता है। वो रोता नहीं है, किसी के शरीर छोड़कर चले जाने पर लोग रोते हैं, जी चले गए चले गए चले गए, कौन चला गया, कौन चला जाता है, शरीर या आत्मा? शरीर चला जाता है, शरीर तो आपके सामने, कहां चला गया? कहते नहीं चले गए चले गए चले गए, कौन चले गए, आत्मा की शरीर? आत्मा चली गई। तो हम कौन थे, शरीर या आत्मा? शरीर थे, तो शरीर तो वही है। फिर ये क्यों कहते हैं कि वो जो थे ना शर्मा भाई साहब, वो चले गए? शर्मा भाई साहब तो सामने लेटे, कौन चला गया? आत्मा। तो हम कौन है, शरीर की आत्मा? आप लोग मानते नहीं है, आप लोग शरीर है, कौन है आप लोग? आत्मा। लेकिन अभी कोई आपसे प्रश्न पूछे बाहर जाके, प्रभु जी नाम क्या है, तो ये मत बोलेगा आत्मा। लोग कहेंगे भैया यहां क्या करो, कब्रिस्तान में जाओ। हम आत्मा है और इस आत्मा का धर्म है सचित आनंद आत्मा, सत चित और आनंद। इसलिए जो व्यक्ति इस चीज को समझ जाएगा कि हम सच्चिदानंद आत्मा है, उस व्यक्ति को जीवन में कोई तकलीफ नहीं होती है। तो जो जितने भी अभी भागवत कथा चल रही है उसमें मूल रूप से ये नहीं सिखाया जाता कि जो आत्मा है इसका धर्म क्या है। अच्छा आपके पास एक गाड़ी है, गाड़ी के अंदर क्या डालना जरूरी है जिससे गाड़ी चलने लग जाए? पेट्रोल से चलती है, पेट्रोल तो लला हुआ, गाड़ी चलती नहीं, रखी हुई है घर के बाहर। ऐसी क्या चीज है कार में, गाड़ी में, जो डाले स्कूटर में, बाइक में, कार में? ऐसे कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मुख्य व्यक्ति है जिसके आने पर वो गाड़ी चलने लगती है? क्या है? हाँ जी, चाबी। ओ वाह, क्या बात है आपकी। अरे भैया, चाबी तो घर में भी टंगी रहती है, चलती कहाँ है? गाड़ी में चाबी लगा दो, चल जाएगी अपने आप, चली गई गाड़ी। हाँ जी, ईंधन, इंजन, ड्राइवर, ड्राइवर। तो ड्राइवर सबसे ज्यादा, तो हमारे शरीर में एक ड्राइवर है जिसके चले जाने पर ये शरीर रूपी गाड़ी बंद होकर बैठ जाती है। वो कौन है ड्राइवर? तो हम कौन थे, गाड़ी थे या ड्राइवर थे? ड्राइवर थे। इसका मतलब हम शरीर है या आत्मा है? आत्मा। आप गाड़ी है या ड्राइवर है? ड्राइवर है। ऐसे ही आप ये शरीर नहीं है, आप इस शरीर के ड्राइवर हैं, मतलब कि आत्मा। इसलिए आप सुनिए, ज्यादातर हमारे समाज में बोला जाता है, वो शरीर छोड़ गए, उनका शरीर शांत हो गया, वो चल बसे। ये शब्दों का प्रयोग भी अपने आप में पूर्ण ज्ञान है कि नहीं? चल बसे, यहां से चले और कहीं जाकर बस गए। वो उनका शरीर शांत हो गया, मतलब शरीर शांत हो गया लेकिन वो अभी जीवित है। इसलिए आत्मा कभी मरती नहीं है। नैनम छंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम कलोदन्ति आपो, नैनम शोषति मारुतः। आपको ना कोई मार सकता है, ना आपको कोई जला सकता है, ना आपको कोई काट सकता है। कटता है, मरता है, जलता है तो क्या? शरीर। और आप कौन है? लेकिन ये ज्ञान मुख्य स्थानों पर दिया नहीं जा रहा। भागवत कथाओं में नृत्य बहुत है, गाना बजाना बहुत है, लेकिन भगवान का और हमारा असली ज्ञान नहीं है। श्रीमद् भागवत के बारे में पद्म पुराण के अंदर बहुत उपख्यान व्याख्यान किया गया है कि क्यों श्रीमद् भागवत सबसे महान ग्रंथ है। तो उसमें एक श्लोक आता है, ये प्रमुख श्लोक है जिससे श्रीमद् भागवत का प्रारंभ होता है। सत चितानंद रूपाया विश्व उत्पत्यादि हेतवे तापत्रया विनाशाया श्री कृष्णाये शरणम् सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्यादि हेतवे तापत्रया विनाशाय श्री कृष्णाये वयम् नमः। तो इसमें कहा गया है सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का रूप कैसा है? सच्चिदानंद। तो भगवान कभी भौतिक देह लेके नहीं आते हैं कि भगवान कोई मनुष्य है हमारी तरह, वो भी मरते हैं। भगवान प्रकट होते हैं, भगवान कभी मरते नहीं हैं। भगवान अर्जुन को ज्ञान देते हैं, गीता में कहते हैं, जन्म करम चमे दिव्यम एवं योवेति तत्त्वतः त्यक्तम देहम पुनर्जन्मम नेति ममेति सुअर्जुनः। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म और कर्म को जान जाता है कि मेरा जन्म होता है और जो मेरा कर्म है कैसा है, जन्म कर्म चा मे दिव्यम, कैसा है? दिव्यम। भगवान कोई हमारी तरह जन्म नहीं लेते हैं, खून पीप मल मूत्र के अंदर थैले में बंद होकर नहीं आते हैं। जब भगवान प्रकट होते हैं तो चारों हाथ में उनके चार हाथ हैं, और भगवान के सर पर क्या है? मुकुट है ना। और भगवान, आपने कभी देखा हो भक्तों ने कि आपके घर में कोई बच्चा जन्म लिया हो जिसके चार हाथ हो, सिर पे मुकुट हो, ऐसा होता है क्या? फिर हम कैसे भगवान को मनुष्य मान लेते हैं? भगवान कह रहे हैं जन्म कर्म चा मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्तम देहम पुनर्जन्मम नेति ममेति सुअर्जुनः। जो व्यक्ति मेरे जन्म कर्म को जान जाएगा वो इस शरीर को त्यागने के बाद वापस इस भौतिक संसार में नहीं आएगा। शिवजी की उपासना करते थे शंकराचार्य। जानते हैं आप शंकराचार्य को? उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जगह भगवान के शिवलिंग की स्थापना करी। वो क्या कहते हैं, जब वो अपना शरीर त्याग कर जा रहे थे तो शंकराचार्य कहते हैं,
पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जटरे शयनम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जटरे शयनम। ये संसार खलो दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे, ये संसार बड़ो दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते।
तो शिवजी की उपासना करने वाले शंकराचार्य क्या कह रहे हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, हे मूर्ख व्यक्ति अब मैं शरीर छोड़ के जा रहा हूं, अगर संसार में पुनरपि जननम दोबारा से जन्म नहीं लेना चाहते, पुनरपि मरणम दोबारा से मरना नहीं चाहते, पुनरपि जननी जटरे शयनम मां की गर्भ में फिर से मलमूत्र में नहीं आना चाहते, तो एक काम करो, क्या करो, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, हे मूर्ख व्यक्ति भगवान का भजन करो। कौन कह रहे हैं, शिवजी के अवतार शंकराचार्य कह रहे हैं। तो शिवजी की उपासना करने वाले व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो भगवान कृष्ण का भजन करे। कौन से भगवान का,
सचिदानंद रूपाया,
जिनका रूप कैसा है, सत मतलब वो कभी समाप्त नहीं होते, हमेशा विराजमान रहते हैं, चित उनको सभी के हृदय में जितना ज्ञान है वो सारा ज्ञान भगवान के पास में है, वो जानते हैं गालीपुर के लोगों के मन में क्या चल रहा है और द्वारका के लोगों के मन में क्या चल रहा है, छावला के लोगों के मन में क्या चल रहा है, नजफगढ़ के लोगों के मन में क्या है, वो सब जानते हैं। वो ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ मंदिर बनाया है तो खाली गालीपुर को जानते हैं, राफ्ता को नहीं जानते हैं, भगवान सबके हृदय में है, सबको जानते हैं, इसलिए उनको कहते हैं चित्त, सत्य चित्त और आनंद। भगवान का एक नाम है क्या, आनंद, क्या नाम है। अच्छा आप देखिए, शिव जी का जन्म होता है तो कहते हैं आज शिवरात्रि है ना, या शादी होती है तो कहते हैं शिवरात्रि है, भगवान राम का जन्म होता है तो कहते हैं आज रामनवमी है, जब राधा रानी का जन्म होता है तो कहते हैं आज राधा अष्टमी है, जब सीता जी का जन्म होता है तो कहते हैं आज सीता नवमी है, लेकिन जब भगवान का कृष्ण का जन्म होता है तो क्या कहते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी क्यों नहीं कहते, खाली जन्माष्टमी, क्योंकि भगवान जो है वो एक ही है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। फिर इतने सारे 33 करोड़ देवी देवताओं की क्या आवश्यकता है, जिस तरह से प्रधानमंत्री एक होता है और प्रधानमंत्री के काफी सारे एमपी एमएलए मिनिस्टर होते हैं, उसी तरह से प्रधानमंत्री एक है, ये अनेक है प्रधानमंत्री, कितने हैं प्रभु जी, एक है, कौन है इस समय, कौन है प्रधानमंत्री, और उनके पास अनेकों मिनिस्टर भी हैं, तो मिनिस्टर हैं शिव जी, मिनिस्टर हैं दुर्गा जी, मिनिस्टर हैं गणेश जी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर कौन है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। सचिदानंद रूपाया विश्व उत्पत्तादि हेतवे, इस विश्व की उत्पत्ति, इस विश्व का संहार, इस विश्व का पालन करने के लिए कौन है, भगवान कृष्ण। भगवान जब सतोगुण से प्रकट होते हैं तो विष्णु कहलाते हैं, कृष्ण जब रजोगुण से प्रकट होते हैं तो ब्रह्मा कहलाते हैं, और कृष्ण जब तमोगुण से प्रकट करते हैं तो वो शिव कहलाते हैं, इसलिए कहते हैं विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे, इस पूरे संसार के विश्व उत्पादन पालन संहार का कर्तव्य भगवान कृष्ण के हाथ में है। और फिर आगे कहते हैं तापत्रय विनाशाय, तापत्रय तीन प्रकार के ताप हमको सता रहे हैं, आदि दैविक आदि भौतिक और आदि आत्मिक, तीन प्रकार के ताप सताते हैं कि नहीं है, पहला है आदि आदि आत्मिक, हमारे शरीर से उत्पन्न होने वाले दुख, जी बूढ़ा शरीर है बहुत दर्द होता है, बच्चे आजकल मेरा सम्मान नहीं करते हैं, बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान खत्म हो गया है, ये क्या है, आदि आत्मिक दुख, मेरे अपने शरीर से उत्पन्न होने वाले दुख है ना, बुखार आ जाना है ना, बहुत सारा के दुख हमारे जीवन में खुद ही उत्पन्न होते हैं, और आदि भौतिक दुख संसार के दूसरे लोगों के द्वारा दिए जाने वाले दुख है ना, ऐसे बहुत दुख हैं जो संसार के बाकी लोग भी देते हैं, जैसे डेंगू मच्छर का काटना, ये क्या है, आदि भौतिक दुख, कुत्ते का काट जाना क्या है, आदि भौतिक दुख, बंदर का काट जाना आदि भौतिक दुख, सास का बहू को बुरी सुनाना क्या है, क्या है माता? आदि भौतिक दुख है ना। और हमारे बेटे का पिता के द्वारा कहे जाने पर आदेश का पालन ना करना और पिता को बुरा भला बोलना, ये क्या है? आदि भौतिक दुख, आदि आत्मिक और आदि भौतिक, और तीसरा है आदि दैविक। देवी देवता कहते हैं अगर तुम कृष्ण की शरण में नहीं आओगे तो तुम्हें दुख दूंगा, इसलिए दुर्गा जी के हाथ में त्रिशूल है और त्रिशूल में तीन धागे हैं, वो आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आत्मिक दुखों को बताते हैं। दुर्गा माई कहती है कृष्ण की शरण में नहीं आएगा तो त्रिशूल मारकर तुझे दुख दूंगी, और इसीलिए पूरा जीवन परिक्रमा मंगाते हैं, वैष्णव मंदिर जाते हैं, सब मंदिरों में जाते हैं, फिर भी दुख हमारे जीवन में आते हैं। इसका कारण है क्योंकि हमने अभी तक कृष्ण शरण को स्वीकार नहीं किया। तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के ताप का विनाश कौन कर सकता है? श्री कृष्णाय वयम नमः, वेद व्यास कहते हैं। इसलिए मैं भगवान कृष्ण की शरण में जाने के लिए आपसे अनुरोध करता हूँ। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तो भगवान कृष्ण की शरण कैसे लेंगे? कली काले नाम रूपा कृष्णस्तु अवतार, कलयुग में भगवान नाम के रूप में प्रकट हुए हैं। कली काले नाम रूपे कृष्णस्तु अवतार, भगवान का अवतार हो चुका है कलयुग में, किस रूप में हुआ है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। तो आप सोचेंगे जब हरे कृष्णा करते हैं तो सब लोग हाथ ऊपर क्यों करते हैं, इसका कारण क्या है? जब किसी बैंक की डकैती होती है और वहां पर चोर उचक्के आते हैं और जब वो चोरी करके भागते हैं तो पुलिस आकर के अपने हाथ से पिस्तौल निकालती है और क्या कहती है, क्या कहती है? हाथ ऊपर कर लो वरना गोली मार दूंगा। तो इसलिए देवी मैया कहती है कि कृष्ण के आगे क्या करो, हाथ ऊपर करो। इसको करने से क्या होगा, मैं अपनी गोली, दुखों की गोली मारना बंद कर दूंगी। इसलिए क्या बोलते रहना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। जोर से बोलो एक बार, तो ये आत्मा के ज्ञान की अनुभूति जिसको हो जाएगी कि मैं आत्मा हूं तो वो इन तापों से बच सकता है अगर वो भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करता है। तो इस प्रकार के अनेक हमारे पास में ग्रंथ हैं। श्रीमद् भागवत पुराण ऐसा ग्रंथ है जो सभी पुराणों में से क्या है, सबसे श्रेष्ठ पुराण है। शिव पुराण, विष्णु पुराण, पद्म पुराण, कुर्मा पुराण, 18 पुराणों की रचना वेद व्यास जी ने करी, उन पुराणों में से सबसे मुख्य पुराण है श्रीमद् भागवतम पुराण। ये ऐसा फल है जिसके ऊपर ना छिलका है ना अंदर गुठली है। आपको आनंद आ रहा है कि नहीं सुनने में? आ रहा है तो एक बार जोर से हाथ ऊपर करके बोलो हरी बोल, इसका मतलब आपको आनंद आ रहा है। तो आनंद क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो भागवत पुराण है ये ऐसा फल है जिसके ऊपर ना छिलका है ना अंदर गुठली है। मतलब आम हो, आम का सीजन है, आम खाया है आप लोगों ने कि नहीं? कभी खाया है? खाया, कितने लोगों ने आम खाया है? सभी ने खाया है। आम तो बड़ा आम है भाई, खास थोड़ी है, सभी ने खाया है, राजा है फलों का। तो जो आम है उसके ऊपर अगर छिलका ना हो, अंदर गुठली ना हो तो कैसा मजा आएगा, कैसा मजा आएगा, आनंद आ जाएगा, है ना। इसीलिए भगवान कृष्ण के बारे में वर्णन है श्रीमद् भागवत पुराण में, और इसी के कारण जो ये आनंद का समुद्र है, आनंद की निधि है, आनंद का समुद्र है ये, और इसीलिए इसमें भगवान कृष्ण का नाम है। क्योंकि जब कृष्ण का जन्म होता है, अभी 15 अगस्त को भगवान कृष्ण का जन्म मनाया जाएगा, तो भगवान का जन्म जो है वो इसीलिए 5000 सालों से मनाया जा रहा है क्योंकि भगवान दिव्य हैं। जब भगवान का जन्म होता है तो कोई ये नहीं कहता है अरे लाला हुआ है, ये नहीं कहता है कि लाला हुआ है, क्या कहते हैं?
कृष्णा,
क्या कहते हैं?
नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की।
तो नंद के कौन होता है? लाला होता है। नंद घर बच्चा भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर बच्चा भयो, नंद घर कौन हुआ? प्रभु जी लोग बोल नहीं रहे, मौन व्रत धारण किया है, कौन हुआ, क्या हुआ? अरे सारे बोलो ना, प्रसाद खाने में तो दांत चलता है, जिभा चलती है, भगवान के नाम में जिभा नहीं चलती है ना, तो ये जिभा यही टेढ़ी मेढ़ी होकर ये छूट जाती है ना, इसलिए नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। तो इसलिए हमको भगवान के नाम का सदा उच्चारण करते रहना चाहिए, नंद के घर आनंद हुए हैं। तो श्रीमद् भागवतम में भगवान कृष्ण के बारे में वर्णन है, इसीलिए इसको श्रवण करने से जीवन में आनंद की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? आनंद की प्राप्ति होती है। तो श्रीमद् भागवत एक सच्चे धर्म का वर्णन करता है। कई प्रकार के धर्म हैं, स्त्री धर्म, राजधर्म, पुत्र धर्म, पिता धर्म, पितृ धर्म, है ना, अनेक प्रकार के ऋण और अनेक प्रकार के धर्म है। स्त्री का भी एक धर्म है, पिता कहता है कि पुत्री का एक धर्म है, पिता कहता है पुत्र का एक धर्म है, माता कहती है पुत्र का एक धर्म है, बच्चे कहते हैं माता का एक धर्म है, और कुछ लोग कहते हैं भक्त का एक धर्म है, राजा का एक धर्म है, नेता का एक धर्म है, लेकिन कितने धर्मों का हम पालन कर सकते हैं? इसलिए भागवत धर्म जो है एक ऐसा धर्म है जो भगवान से जोड़ता है, और इसलिए इसका नाम है, भागवत में कहा गया है,
सवे पुंसाम परो धर्मा यथोर भक्तिर अधोक्षजे, सवे पुंसाम परो धर्मा यथोर भक्तिर अधोक्षजे, अहेतुकी अप्रतिहता यात्मा सुप्रसिद्यति, अहेतुकी अप्रतिहता यात्मा सुप्रसिद्यति, सवे पुंसाम परो धर्मा यतोर भक्ते अधोक्षजः, अहेतुकी अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धते।
सवे पुंसाम परो धर्मा, है ना, इन सारे धर्मों से ऊपर कौन सा धर्म है? भागवत धर्म। अहेतुकी, बिना किसी हेतु के भगवान का भजन करो। मेरे घर में बच्चा हो जाए इसलिए भजन, मेरी नौकरी लग जाए इसलिए भजन, मेरे खेत में अच्छी फसल आए इसलिए भजन, मेरी फैक्ट्री चल जाए इसलिए भजन, नहीं। अहेतुकी अप्रतिहता, और अप्रतिहता मतलब कि कभी रुकनी नहीं चाहिए। आज अगर भजन किया तो कल भी भजन करना है, और अंत काल तक क्या करना है? भगवान का भजन करना है। अहेतुकी अपिहता अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति, उस व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा ज्ञान प्राप्त होता है, उस व्यक्ति आनंद प्राप्त करता है जो अहेतुकी भक्ति करता है। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम, किसी अभिलाषा से शून्य हो जाइए और फिर देखिए कितना मजा आएगा। जैसे एक बार एक बच्चा अपनी माँ के साथ दुकान पर गया, दुकानदार बोला बेटा टॉफी लोगे? तो बच्चा बोला नहीं नहीं अंकल, मैंने तो टॉफी नहीं खाता हूँ। माँ बोली अरे रोज तो दिन में तीन तीन चार चार टॉफी खाते हो, आज बोल रहे हो एक भी टॉफी नहीं खाता हूँ, क्यों? तो दुकानदार बोला कोई बात नहीं माई रहने दीजिए, मैं दे देता हूँ। तो उन्होंने डब्बा खोला और एक मुट्ठी, दो मुट्ठी, दोनों मुट्ठियों से भरकर ऊपर की जेब में और नेकर की जेब में सब जगह टॉफी डाल दी, और जब वो चलने लगा तो उसके दोनों हाथ की मुट्ठियों में भी, हथेली में भी टॉफी दे दी। जब वो इस प्रकार से टॉफी लेकर निकला तो उसकी माँ ने कहा क्यों रे, जब तुझे बोला था दुकानदार ने टॉफी ले ले, तब तो तूने मना कर दिया, और जब दुकानदार ने दिया तब तूने डलवा लिया। कहा देखो मैया, मेरे जो हाथ है वो कैसे हैं, छोटे हैं। अगर मैं लेता अपने हाथ से तो कितनी आती, दो दो टॉफी आते। दुकानदार के हाथ बड़े थे, उसने कितनी दी, ऊपर की जेब भी भर दी और नीचे की जेब भी भर दी। इसीलिए अगर हम सब कुछ भगवान कृष्ण पे छोड़ देते हैं, उनसे कुछ मांगते नहीं हैं और बस उनका भजन करते हैं, तो क्या होगा, वो उनके हाथ से देंगे तो उनके हजार हाथ हैं। अगर वो इतने हजार हाथ से देने लग जाएं तो हमारे दो हाथ उसे संभाल भी नहीं सकते, है कि नहीं है। इसीलिए कैसे भजन करना चाहिए, अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी। अहेतु की, बिना किसी हेतु के भगवान का भजन करना चाहिए। और क्या बोलना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। बोलो जोर से, सभी धर्मों में से श्रेष्ठ धर्म है भागवत धर्म। आजकल ज्योतिषाचार्यों की बड़ी दुकान चलती है, जी जी आपके हाथ में लिखा है कि आपको शनि लग गया है, 7 वर्ष का, 7.5 चल रही है, लोग घबरा जाते हैं, क्या करें जी पंडित जी, जाओ शनि मंदिर में तेल चढ़ाओ, तेल की धारा बह रही है, तेल ही तेल बह रहा है जगह जगह पर। क्यों, क्योंकि शनि महाराज की 7.5 ना लग जाए। जिस प्रकार से शाम के 7 रोज बजते, ऐसा होता है कभी घड़ी पे लटक जाओ सुई पे तो आज 7 नहीं बजेंगे, ऐसा होता है, ऐसे ही ये तो प्रक्रिया है। जिसने जन्म लिया है उसके जीवन में 7.5 वर्ष एक ग्रह आएगा, उसके बाद बृहस्पति आएगा, उसके बाद में दूसरा ग्रह आएगा, चंद्रमा आएगा, शुक्र आएगा। इसमें चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान कृष्ण के चरणों में जो नाखून है उसमें समस्त ग्रह मंडल रहते हैं। तो अगर सोचिए, अगर हम भगवान का भजन करेंगे तो जो समस्त ग्रह मंडल है वो कहाँ है, भगवान के नाखूनों में है। तो कोई कष्ट होने वाला है, कोई कष्ट नहीं होगा। फिर भी लोग घबरा जाते हैं और क्या करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी खरीदते हैं, बड़ा ट्रैक्टर निकाल के लेके आते हैं और उसमें एक चप्पल बांध देते हैं पुरानी फटी हुई, घर के अंदर नींबू मिर्ची बांध देते हैं, कार के अंदर नींबू मिर्ची बांधते हैं और कहते हैं नींबू मिर्ची क्या करेगा, हमारी रक्षा करेगा। अगर नींबू मिर्ची रक्षा कर सकता है तो फिर जो बॉर्डर पे खड़े सैनिक है पाकिस्तान से, उनके सबके गले में क्या डांग दो, नींबू मिर्ची, गोलियां हटा दो, बंदूक हटा दो, नींबू मिर्ची टांग दो और बोलो चला पाकिस्तान गोली, देखें जरा हमारे नींबू मिर्ची में कितना दम है। होगा ऐसा कुछ नहीं। तो फिर जब नींबू मिर्ची गोली नहीं बचा सकते, आपको मृत्यु से कैसे बचाएंगे। एक का तो फोन आया हमारे पास, कहता है प्रभु जी किसी ने काला जादू किया है, हमारे घर के गेट के ऊपर हल्दी की गांठे और यहाँ पर नमक और लाल मिर्च छोड़ दिया है, लगता है किसी ने टोना टुटका कर दिया है। तो हमने कहा देखो, जिसने भगवान कृष्ण का भजन किया है उसको डरने की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान का एक नाम है अभय। जो भगवान का भक्त होता है, जैसे हमारे श्रील प्रभुपाद जिनका यहाँ पर विग्रह है, हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य जिन्होंने आज से 50 साल पूर्व इस्कॉन संस्था की स्थापना करी, उनका नाम तो अभय चरण, क्योंकि वो भगवान कृष्ण के भक्त थे। उन्होंने भगवान का साक्षात्कार किया और उन्होंने कहा कि जीवन में कोई कृष्ण भक्ति करेगा तो वो निडर हो जाएगा, अभय हो जाएगा, क्योंकि भगवान क्या देते हैं, आपको अभय का वरदान देते हैं, आप डरोगे नहीं, मृत्यु के डर से भी आप बच जाओगे, है ना। तो व्यक्ति का फोन आया, कहता है कि हल्दी की गांठे हैं, मिर्ची है, नमक है, क्या करें। तो मैंने कहा एक चिट्ठी लिखकर रख दो, जिसने रखा होगा उसके लिए, कि भैया कल आलू टमाटर भी रख देना, सब्जी बना लेंगे, है ना। तो सब्जी बनाने के काम आता है, हल्दी की गांठ से कुछ नहीं होता है, है ना, उसमें कोई बारूद थोड़ी लगा है जो कि आपको खत्म कर देगा। फिर भी लोग घबराते हैं, यशोदा मैया भी घबराती थी कि मेरे लाला को कहीं नजर ना लग जाए। उसके लिए भागवत में वर्णन है कि अपने बच्चों के सिर को सूंघना चाहिए, अपने बच्चों के सिर को सूंघना चाहिए, सूंघने से और निरोगी हो जाते हैं और उनकी लंबी उम्र होती है। लेकिन अगर लंबी उम्र हो लेकिन शराब पीता रहे तो क्या फायदा, लंबी उम्र हो और जुआ खेलता रहे तो क्या फायदा। इसलिए सिर को सूंघना भी चाहिए, दीपक भी उतारना चाहिए, भगवान से उनकी लंबी उम्र की कामना भी करनी चाहिए, पर उनको यह भी सिखाना चाहिए क्या, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो भगवान के अनेकों अवतार में से एक अवतार भगवान लेते हैं और 24 प्रकार के अवतारों का वर्णन श्रीमद् भागवत में है। तो एक दिन की कथा में तो सभी अवतारों का वर्णन नहीं किया जा सकता। तो भगवान ने जिस प्रकार से क्रम में अवतार लिया है, उन 24 अवतारों का वर्णन करते हुए हम श्रीमद् भागवत में स्वयं भगवान कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश करेंगे। तो एक बार सभी 24 अवतारों का नाम हाथ जोड़ कर लेंगे और सभी अवतारों के बारे में जानेंगे कि भगवान के मुख्य ऑथराइज्ड है। ऑथराइज्ड को क्या बोलते हैं हिंदी में? ऑथराइज्ड मतलब प्रमाणिक। प्रमाणिक जो है, प्रमाणिक भगवान के अवतार कौन से हैं? ऐसे नहीं होता है कि कोई भी पत्थर लगा ले और बोले ये भगवान जी, ऐसे नहीं भगवान होते हैं। भगवान है सवे पुंसाम परो धर्माम यथोर भक्तिर अधोक्षज। भगवान का एक नाम है अधोक्षज। तो अधोक्षज भगवान जो है वो 24 अवतार लेते हैं। तो पहला अवतार क्या है? चार कुमारों का। क्या अवतार है? चार कुमार। हाथ जोड़कर बोलिए चतुर कुमार भगवान की। दूसरा अवतार है भगवान का सौकर रूप। भगवान ने वराह रूप लिया, तो बोलिए वराह रूप भगवान की। तीसरा अवतार लिया भगवान ने नारद मुनि का, तो बोलिए नारद मुनि भगवान की। चौथा अवतार लिया भगवान ने नर नारायण ऋषि का, जिन्होंने बद्री का आश्रम में बैठकर तपस्या करी, बोलिए नर नारायण ऋषि की। पांचवा अवतार है भगवान का कपिल अवतार। कपिल भगवान बनकर आते हैं और अपनी माता देवहूति को भक्ति भागवत का ज्ञान देते हैं, कपिल भगवान की। छठे अवतार है दत्तात्रेय भगवान, जिन्होंने दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं को अपने जीवन में बनाया और उनसे शिक्षा प्राप्त करी। उन्होंने सांप से, बिच्छू से, कबूतर से, स्त्री से, बच्चे से, सभी से शिक्षाएं प्राप्त करी हैं। तो छठे अवतार हैं दत्तात्रेय अवतार। बोलो दत्तात्रेय भगवान की। सातवें अवतार है यज्ञ अवतार। जब हम घर में यज्ञ करते हैं तो उस यज्ञ अग्नि में जो प्रकट होती है अग्नि, वो अग्नि देव के साथ साथ एक अवतार है भगवान के यज्ञ अवतार। इसीलिए भगवान कहते हैं जब आप अग्नि में कुछ फल आदि डालते हो तो मैं अग्नि के द्वारा भी क्या करता हूँ, ग्रहण करता हूँ। तो दो जगह से भगवान ग्रहण करते हैं, एक अग्नि के रूप में और दूसरा ब्राह्मण के मुख से। अपने घर में ब्राह्मण को बुलाएं और उसको भोजन खिलाएं तो उससे क्या होता है, भगवान उसको स्वीकार करते हैं। भगवान ने भागवतम के पांचवें स्कंद में कहा कि मैं अग्नि के द्वारा और ब्राह्मण के वैष्णव, वो वैष्णव होना चाहिए, गुटके वाला ब्राह्मण नहीं होना चाहिए। गुटका पान खाता है और फिर उसके साथ में भोजन खाए, उससे भगवान नहीं स्वीकार करते। वो शुद्ध होना चाहिए, बीड़ी पीने वाला नहीं होना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने वाला वैष्णव भक्त होना चाहिए, क्योंकि वैष्णव जो होता है वो सदा से सबसे उच्च ब्राह्मण होता है। तो इस तरह से वैष्णव जो है उसको बुला करके प्रसाद खिलाने से भगवान स्वीकार करते हैं, है ना। तो जो ये ग्रस्त लोग हैं, इन ग्रस्तों का तो कर्तव्य है कि अपने घर में भक्तों को बुलाएं और उनका अतिथि सत्कार करें। अपने जीवन में अतिथि सत्कार बहुत जरूरी है। चार वर्ण और चार आश्रमों की रचना भगवान ने करी है। चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुणाकर्मा विभागशः। चतुर्वर्णम मया सृष्टम, मैंने अपनी सृष्टि में चार वर्ण और चार आश्रम बनाए हैं। चतुर्वर्णम मया सृष्टम, चार वर्ण और चार आश्रम। पहला वर्ण कौन सा है? ब्राह्मण। दूसरा है क्षत्रिय। तीसरा है वैश्य और चौथा है शूद्र। ब्राह्मण का कर्तव्य है कि वो पढ़े, भागवत पढ़े और दूसरों को पढ़ाए, लहसुन प्याज मदिरा का सेवन ना करे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करे और दूसरों को भागवत पढ़ने में रुचि उत्पन्न करवाए। पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह, वो ब्राह्मण होता है। ये नहीं होता है मैंने अपने नाम के शर्मा लिखा है और मुझे प्याज खाने में कोई शर्म ही नहीं आती है, भगवान का माला जपने में मुझे बड़ी शर्म आती है, ऐसे ब्राह्मण नहीं होता है। ब्राह्मण होता है जो ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो कि ब्रह्म को जानता है, जो भगवान कृष्ण को जानता है, वो ब्राह्मण है। और चार आश्रम बनाए भगवान ने। कौन से आश्रम? ब्रह्मचारी, ग्रस्त, वानप्रस्थ, सन्यास। ब्रह्मचारी आश्रम वो आश्रम है जिस आश्रम में गुरु की आज्ञा ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। ब्रह्मचारी आश्रम का कर्तव्य है गुरु की आज्ञा। ग्रस्त आश्रम का सबसे बड़ा कर्तव्य है क्या? जो भी घर पे आए अतिथि देवो भव, अतिथि सत्कार ये गृहस्थ का सबसे बड़ा कर्तव्य है। तीसरा कर्तव्य वानप्रस्थी का, वानप्रस्थी का कर्तव्य है तपस्या। क्या है? तपस्या। वानप्रस्थ व्यक्ति को तपस्या करनी चाहिए और वानप्रस्थ तपस्या के बाद संन्यास। संन्यास के लिए सबसे बड़ा धर्म है वैराग्य। क्या है? वैराग्य। तो ऐसा नहीं है ये धर्म और आश्रम नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन आश्रमों में मुख्य हैं। और सभी धर्मों में से जो ये गृहस्थ जीवन है, हम सभी गृहस्थ हैं लगभग यहाँ पर। गृहस्थ व्यक्ति को अतिथि सत्कार के साथ साथ हरि नाम का भजन करना चाहिए, चार नियमों का पालन करना चाहिए, जीवन में कभी भी मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, दूसरा उसको कभी मांसाहार लहसुन प्याज आदि का सेवन नहीं करना चाहिए, तीसरा उसको जुए आदि की आदतों से बचना चाहिए, और चौथा उसको पर स्त्री पर पुरुष संग में नहीं फंसना चाहिए, पर स्त्री के संग में या पर पुरुष के संग में। अगर कोई ये चार काम करता है गृहस्थ जीवन में और अतिथि सत्कार करता है और भगवान का भजन करता है, तो उससे बड़ा गृहस्थ धर्म और कोई है ही नहीं, है ना। कई लोग बोलते हैं जी नौकरी का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, वो सारे कर्तव्य बाद में है। प्रथम कर्तव्य है अतिथि सत्कार, चार नियम का पालन और हरि नाम का भजन, उसके बाद नौकरी। नौकरी करी, हरि नाम नहीं किया, सब कुछ किया लेकिन सब बेकार चला जाएगा। इसलिए गृहस्थ जीवन में अतिथि सत्कार बहुत जरूरी है। जो भी घर पे आए उसको भगवत भजन करना सिखाना चाहिए, भगवत भजन के अनुरूप उनका उनका सम्मान करना चाहिए। जैसे आज इतने सारे भक्त आपके गांव में आए हैं, आपने इनका इतना सुंदर सत्कार किया है, ऐसे सत्कार करना चाहिए। तो एक भक्त की कथा आती है जो कि जिनका नाम था विष्णुकांची। विष्णु कांचीपुरण में एक रहते थे विष्णुकांची नाम के ब्राह्मण, जिनका असली नाम था दामोदर पंडित। विष्णु कांची कांचीपुरम के पास, कांचीपुरम स्थान को विष्णु कांची भी कहते हैं क्योंकि वहां पे वरदराज कृष्ण का एक विग्रह है। वरदराज कृष्ण विष्णु कांची स्थान में रहते हैं और वहां एक भक्त थे जिनका नाम था दामोदर पंडित। क्या नाम था?
दामोदर पंडित।
आप लोग सो रहे हैं, नाम नहीं बोल रहे हैं। क्या नाम था?
दामोदर पंडित।
दामोदर पंडित। तो दामोदर पंडित जो थे उनके घर पर ये था कि खाने को कुछ हो ना हो लेकिन भगवान का भजन बहुत पक्के से करते थे। रोज नियम पूर्वक अपने चार नियमों का पालन और भगवान का ध्यान पूर्वक भजन। तो ये दामोदर पंडित थे, भगवान इनसे बड़े प्रसन्न हुए। जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो क्या लेने आते हैं? परीक्षा। और परीक्षा जो होती है वो दुखदाई होती है और उसी परीक्षा में हम भजन छोड़ देते हैं। मान लीजिए घर में कोई बीमार पड़ गया तो सबसे पहले आप भजन करना छोड़ेंगे, बोले अरे पूजा पाठ बाद में, पहले बीमारी ठीक कर लूं। ये नहीं पता कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। अगर सुख में सुमिरन करेंगे तो दुख आने ही वाला नहीं है जीवन में, और आएगा भी तो असर नहीं पड़ेगा, आनंद का अनुभव रहता है। चैलेंज कर सकते हैं किसी को, कोई व्यक्ति बोले हमने कृष्ण का भजन करते हैं हम दुखी हैं, है कोई ऐसा जो सच्चा कृष्ण का भजन करता हो और दुखी हो? वो कभी दुखी नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। तो दामोदर ब्राह्मण जो थे उनके घर खाने पीने की बहुत कमी रहती थी। एक दिन भगवान ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उनके घर पर आए, और जब भगवान आए तो भगवान ने एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाया सन्यासी का, और आकर के कहा भिक्षाम देही, मुझे भिक्षा दो। तो उनके घर पे दोनों भूखे प्यासे बैठे थे क्योंकि आज दामोदर पंडित को कुछ भिक्षा में कुछ मिला नहीं था। तो बेचारा गरीब ब्राह्मण बोला आइए आइए मुनिवर, हमारे घर पे आप आए, अतिथि देवो ब्रवा, ग्रस्त आश्रम में हूँ, खाने पीने को घर में कुछ नहीं है, लेकिन भगवान और भगवान के भक्त की सेवा अपनी क्षमता से ज्यादा करूंगा, भगवान और भगवान के भक्त की सेवा क्षमता से अधिक करूंगा। बुलाया, बैठिए बैठिए, बैठने के लिए चटाई दी। तो जो भी हमारे घर आए उसको बैठने के लिए खाट चटाई सोफा कुर्सी देना चाहिए। उसके बाद उनसे कहा जल लेंगे, तो अपने टूटे हुए लोटे में वो जल लेकर आए और कहा यही है हमारे पास, एक ही बर्तन में पत्नी भी पीती है और मैं भी पीता हूँ, इसी से हम नहाते हैं, आप इसी से पानी ग्रहण कर लीजिए। तो सन्यासी ने पानी ग्रहण किया। पानी ग्रहण करने के बाद बोला बहुत भूख लगी है, आपने अंदर बिठाया है तो खिला भी दो, खाने के लिए कुछ दे दो। तो कहा ठीक है हम आपके खाने का इंतजाम करते हैं, कुछ भोग लगाकर प्रसाद लेके आते हैं। अब अंदर गए, पत्नी को बोले कुछ है? कहा देखिए स्वामी, दो दिन से तो खाने के लिए आप कुछ लाए नहीं, किसी के घर से न चावल लाए, न दाना लाए, न अनाज लाए, कैसे आज हम इस सन्यासी को भोजन कराएंगे? तो पत्नी बोली देखिए मेरे पास न गहने हैं न साड़ी है, बस एक कपड़ा मैं बांध लेती हूँ, एक कपड़ा आप बांध लेते हैं, अगर हम इसको भी बेच देंगे तो फिर हम कैसे लज्जा रूप से कैसे भगवान के भक्त की सेवा करेंगे। तो पति और पत्नी दोनों विलाप कर रहे थे, सोच रहे थे, तभी पत्नी को एक बुद्धि आई और उसने कहा मेरे लंबे लंबे केश हैं, मेरे बाल कैसे हैं, लंबे लंबे हैं, आधे बालों को काट कर रस्सी बना लो और रस्सी बनाकर बेच दो बाजार में 10 रुपए में जाके, और उस 10 रुपए से जितना चावल आएगा और दाल आएगी उससे हम प्रसाद बना के क्या कर देंगे, इनको खिला देंगे। ये देखिए भगवान के भक्त के अंदर ये भाव होना चाहिए, इससे पता चलता है कौन कैसा है, है ना। तो जिसका निर्मल हृदय है भगवान कहते हैं वही मुझको प्राप्त कर सकता है ना। रामायण में कहा गया है निर्मन जन सोही मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र ना भावा। जो कपटी है वो मुझे प्राप्त नहीं करता, मुझे कौन प्राप्त करता है, जो मेरा भक्त होता है, निर्मल हृदय होता है। उन्होंने जल्दी से अपनी पत्नी की चोटी को रस्सी रूप में लिया और जाकर के बेच दिया, चोटी 10 रुपए में बिकी और उससे अनाज आया और अनाज का भोग लगा के ठाकुर जी को उन्होंने किसको खिलाया, सन्यासी को। सन्यासी ने प्रसाद ग्रहण करके बोला बहुत थक गया हूं खाते खाते, अभी विश्राम करना चाहता हूं। कहा हाँ जी महाराज आप ही का घर है। उनको लाकर के एक चटाई दी और चटाई पर वो विश्राम करने लगे। रात्रि हुई तो सन्यासी बोला अब रात में कहां जाऊंगा, यही रात को रुकने दीजिए। कहा ठीक है रुक जाइए। कहा रुकने के लिए कुछ रात्रि भोजन का इंतजाम हो जाता तो ठीक था। अब ये सोचने लगे कि आधे बाल तो सुबह चले गए, अब क्या करें, बाकी बाल का क्या करें। तो पत्नी बोली चिंता मत करिए, बाल का क्या है, ये तो दोबारा आ जाएंगे, लेकिन अतिथि दोबारा नहीं आएगा। उन्होंने तुरंत अपनी अपने पति का उस्तरा लेकर के अपने बालों को उतार दिया और बाकी बचे हुए बालों की भी रस्सी बनाई और रस्सी बना के उनके पति ने बाजार में जाके बेचा और उससे फिर 10 रुपए आए, फिर अनाज खरीदा, चावल खरीदा और भगवान के भक्त को भोजन कराया। लेकिन आप देखिए अभी दोनों ने भोजन नहीं किया है, दोनों भोजन करा रहे हैं, दोनों ने किया नहीं भोजन और दो दिन से पहले ही भूखे थे। ऐसे भक्त जो थे रात्रि में जब वो विश्राम करने लगे सन्यासी, तो उन्होंने कहा महाराज आप थक गए होंगे, ये तो खाना बना रहे, वो बेचारे खा रहे, फिर भी ये कह रहे हैं आप थक गए होंगे, आपके पांव दबा दें। तो दोनों पति पत्नी ने एक एक पांव पकड़ लिया और एक एक पांव दबाने लगे। पत्नी एक पांव दबा रही है, पति एक पांव दबा रहा है। दबाते 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 दोनों को नींद आ गई और दोनों सो गए। कोई सोफा तो था नहीं, वही चटाई के किनारे दोनों सो गए और नीचे सन्यासी भी सो रहे थे। रात्रि को सोते सोते पत्नी को ऐसा लगा कि यहां से वो पांव के ऊपर हाथ था कि कोई हट गया है, यहां से कोई है नहीं और बहुत तेज का प्रकाश आ रहा है हमारे घर में। और पत्नी देख रही है कि उसके लंबे लंबे बाल हैं, केश कांति तेल लगाते हैं ना वैसे लंबे लंबे बाल, केश कांति तेल और शिखा काई लगाते लंबे बाल होते हैं, वैसे लंबे बाल निकल आए हैं। और देख करके हैरान थी, उसने अपने पति को उठाया, स्वामी उठिए उठिए देखिए क्या हुआ है, मेरे बाल पुनः निकल आए और वो भी पहले से भी अच्छे सुनहरे सुंदर बाल। और हमारे घर में खाने पीने के लिए सब कुछ जो हमारा किचन है उसमें सब कुछ रसोई में सब कुछ पूर्ण रूप से भर गया है और हमारे घर में नए वस्त्र आ गए हैं और नया सोफा नए बेड सब कुछ नया आ गया है, ये कैसे हुआ। तो पति बोलने लगा ये और कुछ नहीं, ये कौन थे, भगवान स्वयं हमारी परीक्षा लेने आए थे। इसलिए गृहस्थ को अपनी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के लिए जो भी घर पे आए उसका सत्कार करना चाहिए, दुश्मन भी घर आए तो उसका सत्कार करना चाहिए, जानवर भी घर आए तो उसके लिए कुछ डालना चाहिए। पहले शास्त्रों में वर्णन है जो ग्रस्त होते थे वो घर के बाहर जाके चिल्लाते थे, आज कोई भूखा तो नहीं है, जब आवाज नहीं आती थी कोई भूखा नहीं है तो फिर खुद खाते थे। आजकल कोई चिल्लाता रहे मैं भूखा हूं तो हम कहते पहले मैं तो खा लूं तुझे बाद में दूंगा, अभी उल्टी परिस्थिति है। इसीलिए आजकल का जो ग्रस्त है वो त्रस्त है, कैसा है, त्रस्त है। आजकल का ग्रस्त कैसा है, त्रस्त है, क्योंकि वो भगवान का भक्त नहीं रहा, भगवान का भक्त नहीं रहा, लोगों के साथ उसका सत्कार अच्छा नहीं रहा। हरे कृष्णा बातें ना करिए, कथा को श्रवण करिए ध्यान से। कथा नहीं सुनना चाहते आप लोग, बंद कर दें। सुनना चाहते तो बोलिए मत, कान को इधर लगाइए। भागवत कथा का एक गुण है, जो सुनता है वो भगवत धाम जाता है, जो भागवत कथा नहीं सुनता वो नरक में जाता है। क्यों नरक में जाता है? क्योंकि भगवान का अपराध होता है। भागवत बताया ना, स्वयं भगवान है, तो भागवत का हमें श्रवण ध्यान पूर्वक करना चाहिए। तो इस तरह से ग्रस्त जीवन में भगवान के भक्त का कर्तव्य है कि वो घर में अतिथि सत्कार करे। तो ऐसे ही एक भक्त की कथा हम श्रवण करेंगे, उनका नाम है भक्त सुदामा। सुदामा के नाम सुना है आपने? कितने लोगों ने सुना है सुदामा का नाम? सभी ने सुना है। तो आज आपको सुदामा के विचित्र चरित्र का चर्चा यहाँ पर सुनाएंगे। पहले भगवान के 24 अवतार पूर्ण करते हैं, तो सातवें अवतार हमने कौन से बताए थे? देखें जरा बुद्धि किसकी तेज है। कौन सा था सातवां अवतार? ये देखो, अभी सुनकर अभी भूल गए, फिर कल क्या याद रखोगे? हाँ ना, यज्ञ अवतार। हरि बोल। कौन से अवतार थे? यज्ञ अवतार। आठवें अवतार है ऋषभ देव अवतार। कौन है? ऋषभ देव। तो बोलिए ऋषभ देव भगवान की। तो ये जैन धर्म शुरू हुआ, ये जैन धर्म के स्टार्टिंग शुरू करने वाले थे ऋषभ देव भगवान। नौवां अवतार है राजा प्रथु का अवतार। प्रथु रूप में भगवान आते हैं। बोलो राजा प्रथु भगवान की। भगवान का दसवां अवतार है मत्स्य अवतार। मछली के रूप में भगवान ने वेदों को रक्षा करी है, तो मत्स्य अवतार बोला जाता है दसवां अवतार। बोलिए मत्स्य अवतार भगवान की। ग्यारहवां अवतार है भगवान का कच्छप अवतार। कछुए के रूप में भगवान ने समुद्र मंथन में मंदराचल पर्वत को अपनी पृष्ठ अपनी पीठ पर धारण किया। बोलो कच्छप भगवान की। बारहवां अवतार है भगवान का धन्वंतरी अवतार। तो भगवान ने धन्वंतरी रूप में धनतेरस के दिन प्रकट होकर के सभी को अमृत का कलश पिलाया और सबको निरोगी बनाया। धन्वंतरी भगवान की। तेरहवां अवतार है भगवान का मोहिनी अवतार। जब अमृत कलश को राक्षसों ने छीन लिया, तो उनसे वापस लेने के लिए भगवान ने अपना एक रूप रखा, जिसे कहते हैं मोहिनी रूप। मोहिनी भगवान की। चौदह अवतार है भगवान का अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए और असुरों का वध करने के लिए कण कण में अपने होने की, हाँ, इस बात को स्थापित किया कि मैं कण कण में हूं। तो नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं। बोलो नरसिंह देव भगवान की। पंद्रवा अवतार है वामन देव अवतार। भगवान का वामन देव अवतार। तो वामन देव प्रकट होते हैं और राजा बलि को आकर के तीन पग भूमि मांगते हैं और तीन पग भूमि में पूरे ब्रह्मांड को नाप लेते हैं। ऐसे वामन देव भगवान की। उसके बाद में भगवान ने भृगुपति रूप लिया, परशुराम का रूप लिया और 21 बार क्षत्रिय वंश का नाश किया इस पूरे ब्रह्मांड में। बोलो परशुराम भगवान की। 17वें अवतार है भगवान के वेद व्यास। वेद व्यास रूप में उन्होंने 18 पुराणों की रचना करी, 108 उपनिषदों की रचना करी, महाभारत की रचना करी और भगवद गीता की रचना करी। ऐसे जो वेद व्यास रूपी शक्तियावेश अवतार है भगवान के, अगर वो ना होते तो आज हमारी भागवत ना होती, अगर वो ना होते तो हमारी कथा नहीं होती। इसलिए वेद व्यास भगवान को प्रणाम करना चाहिए। बोलो वेद व्यास भगवान की। भगवान के 18वें अवतार है भगवान के राम अवतार। राम रूप में भगवान ने प्रकट होकर के क्या किया है? भगवान ने किसका वध किया? राम रूप में रावण का वध क्यों किया भगवान ने? रावण का वध इसलिए किया, हाँ, क्योंकि रावण जो था उसने कहा सीता किसकी है, लेकिन सीता है किसकी? राम की। सीता का मतलब होता है लक्ष्मी, लक्ष्मी मतलब होता है धन, पैसा होता है पैसा। हमारे घर में भी पैसा है, आप सबके पास में धन है कि नहीं है? घर का गुजारा करने के लिए धन है सब, लेकिन वो किसका है? किसका धन है आपके घर में? हाँ जी, भगवान का। तो दोगे भगवान को? दोगे नहीं, है भगवान का लेकिन देंगे नहीं। स्वामी जी बोलने बोलने को है, देने को नहीं है, है ना? तो सीता जी जो है वो लक्ष्मी है, नारायण की है, राम की है। तो लक्ष्मी को उठाकर रावण ले गया और क्या कहा? सीता तो किसकी है? मेरी है। जो उठा के ले गया और कहा मेरी है, तो भगवान राम ने क्या किया? रावण का किसकी पूजा करता था? शिव जी की, फिर भी मारा गया। क्यों मारा गया? क्योंकि उसने कहा ये लक्ष्मी किसकी है? मेरी है। ऐसे ही जो कुछ भी है हमारे पास में वो किसका है? भगवान का। तो किसको दे देना चाहिए? भगवान को। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, बोलो तेरा
तुझको अर्पण क्या लागे मेरा,
तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा,
तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा।
जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, बोलो 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 जगदीश हरे, जोर से बोलो जय
जगदीश हरे,
स्वामी स्वामी जय जगदीश हरे। भगवान का नाम है जगदीश, जगत के ईश, मतलब जगत के ईश्वर। खूब भजन गाया बचपन से, तेरा तुझको अर्पण। लेकिन जब ही मांगेंगे ना कि हमारा जन्माष्टमी उत्सव है और द्वारका में जन्माष्टमी उत्सव में बहुत खर्चा होता है, आप सबके पास जो है वो ठाकुर जी को दे दो, लेकिन अभी पता चल जाएगा कि आप देंगे कि नहीं देंगे। हमारे बीच में बहुत सारे भक्त हैं, वो आपकी कथा अंत होने के बाद में आप लोगों के लिए दान की रसीद दे देंगे। आप चाहें तो उनको दान दे सकते हैं। अगर तेरा तुझको अर्पण, तो हम आपसे 1,00,000 रुपया नहीं मांग रहे हैं, 10,000 रुपया नहीं मांग रहे हैं। आपसे जो इच्छा हो आपकी, वो भगवान के नाम पे दीजिएगा। अगर भगवान के नाम पे देने का मौका मिले तो व्यक्ति क्या देता है? अपने जेब का सबसे फटा पुराना नोट निकाल कर कहता है तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। 10 रुपए का फटा नोट तेरा है। अगर भगवान भी रिटर्न में वही देने लग जाए तो फिर हमारे को पता चलेगा हमारा क्या है ना। तो भगवान की सेवा में अगर सच में आप मानते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो भगवान को देना चाहिए। ऐसे भक्त है सुदामा। उन सुदामा भक्त की कथा हम प्रारंभ करेंगे। और इस सुदामा भक्त जो है वो क्या कहते हैं कि अगर ऐसे भगवान के भक्त सुदामा का चरित्र अगर कोई सुनता है, तो कहा गया है कि वो इस भौतिक संसार के कर्म बंधन में नहीं फंसता। भौतिक संसार के कर्म बंधन में, जोर से बोलो हरि बोल,
हरि बोल।
हर बार बोलना चाहिए क्या? हरि बोल। तो भौतिक संसार के कलमश में फंसता नहीं है। तो अब हम श्रीमद् भागवत से भगवान के भक्त की कथा श्रवण करेंगे कि किस प्रकार सुदामा भक्त भगवान के अग्रणीय भक्तों में से एक है, जिनका नाम आज भी आप सब जानते हैं। 5,000 साल पहले कोई व्यक्ति आया हो उसका नाम हम जानते हो। हमारे पूर्वज जो शरीर छोड़कर चले गए या हम छोड़कर चले जाएंगे, हमारा नाम हमारे बच्चे भी याद रखेंगे कि नहीं मालूम नहीं। लेकिन एक भक्त का नाम सदा स्मरण किया जाता है, क्योंकि भक्त जो होता है वो भगवान से जुड़ा होता है, और जो भगवान से जुड़ा है उसका नाम सदा ही चर्चित होता है। तो ऐसे भगवान के बारे में राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से कहा, श्री राजा उवाच। राजा ने भगवान, ये भक्त सुखदेव गोस्वामी से कहा, श्री राजा उवाच भगवान यानि च अन्यानि मुकदंदस्य महात्मनः वीर्यणे अनंत वीर्यसः श्रोतम इच्छति हे प्रभो। श्रीराजः वाचः भगवान यानि च अन्यानि मुकदंदस्य महात्मनः वीर्याणि अनंत वीरस्यः श्रोतम इच्छति हे प्रभो। हे प्रभो, मैं अभी भगवान परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से राजा कह रहे हैं कि मैं भगवान के बारे में सुनना चाहता हूँ, और उनके बारे में, किसके बारे में? मुकुंदस्य, मुकुंद भगवान मतलब मुक्तिदाता, एक मुकुंद है, उस मुकुंद भगवान के बारे में सुनना चाहता हूँ। तो बता रहे हैं कि किस प्रकार से मुकुंद के बारे में श्रवण करना चाहिए, भजन करना चाहिए। भगवान ने उनके भक्त के बारे में वर्णन किया, एक भक्त हैं जो अपने जीवन की अपनी हर इंद्रिय को भगवान की सेवा में लगाते हैं।
सवाकया तस्य गुणान गणिते करो चा तत्कर्म करो मनश्च स्मरे द्वसंतः स्थिर जंगमेशो श्रोति तत् पुण्यं कथा सा कर्णः सवाक्यः तस्य गुणान्नेति करो चा तत् कर्म करो मनश्च स्मरे द्वसंत स्थिर जनसंगमेशो श्रोति तत् पुण्यं कथा सा कर्णः।
असली वाणी वही है, सवाक या तस्या गुणान गृणित है, तो असली वाणी वही है जो भगवान की सेवा में लगे। असली हाथ वही है जो भगवान के लिए दोनों हाथों से दान दें, दोनों हाथों से ताली बजाएं, दोनों हाथों से मंदिर की सेवा करें। आंखें वही हैं जो भगवान का दर्शन करने के लिए सदा ही प्रेरित रहें। कान वही हैं जो सदा भगवान का भजन सुनना चाहें। तो इन जिह्वा से बहुत ही बुरा भला बोलते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं लेकिन भगवान का भजन नहीं करते हैं, तो इस जिह्वा का उपयोग किस में करना चाहिए? भगवान का भजन करने में। तो ऐसे भक्त हैं सुदामा, वो सदा क्या बोलते हैं?
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा
भगवान के भक्त सुदामा जो हैं सदा भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, और ऐसे भक्त भगवान के साथ में गुरुकुल में पढ़ा करते थे, और गुरुकुल में पढ़ते वक्त संदीपानी मुनि आश्रम में उज्जैन के पास, आज भी वो आश्रम है उज्जैन के अंदर, दोनों सुदामा और भगवान कृष्ण साथ में रहा करते थे। एक दिन भगवान के गुरुदेव संदीपानी मुनि की पत्नी ने कहा कि हमें प्रसाद बनाने के लिए कुछ लकड़ियों की आवश्यकता है। तो दोनों कुमारों को, सुदामा को और कृष्ण को, भगवान की भगवान के जो गुरु थे संदीपानी, उनकी पत्नी ने कहा आप लकड़ियां ले आइए, तो लकड़ी लेने के लिए भेज दिया। तो जब वो लकड़ी लेने के लिए जा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब वो लकड़ी लेने के लिए जाते हैं तो वहां पर बारिश आ जाती है, और बारिश आने पर दोनों सोचते हैं कि लकड़ियां भींग ना जाएं, तो लकड़ियां भींग ना जाने के डर से दोनों पेड़ पर चढ़ जाते हैं और वृक्ष के नीचे शरण ग्रहण करते हैं। लेकिन उनकी गुरु माता ने उनके चलने से पहले उनको कुछ प्रदान किया था खाने के लिए, सुदामा को क्या दिया था? शने दिए थे। लेकिन जब वो वृक्ष पर चढ़ गए बारिश आने पर, तो कृष्ण ऊपर बैठे थे और सुदामा नीचे बैठे थे। भगवान कृष्ण बोलते हैं सुदामा से, सुदामा बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने के लिए है? तो सुदामा कहते हैं खाने के लिए, खाने के लिए तो कुछ भी नहीं दिया मैया ने, है ना, लेकिन उनके पास क्या था खाने के लिए? चने थे। तो उन्होंने खाना शुरू कर दिया, चुपके चुपके धीरे धीरे मुख में डालकर चबाना शुरू किया, और कड़ंग 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 की आवाज आ रही थी। जब आवाज आ रही थी तो कृष्ण भगवान ने कहा सुदामा मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम कुछ खा रहे हो? तो कहा नहीं नहीं भगवान मैं खा नहीं रहा हूं, सर्दी के कारण मेरे दांत बज रहे हैं कड़कड़ 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 कड़कड़, है ना। कहा अच्छा अच्छा बहुत ठंड लग रही है, क्या मैं तुम्हें अपनी उत्तरिया दे दूं? नहीं नहीं मेरा काम चल जाएगा। और चबाता रहा और यही कहता रहा कि ठंड। तो उसने भगवान का हिस्सा क्या कर लिया? खा लिया। और भगवान का हिस्सा खाने से कैसा हो गया पूरा जीवन, वहां से निकलने के बाद में दो वक्त की रोटी का जुगाड़ नहीं हो पाया। कारण क्या था? इसका कारण यही था कि उन्होंने भगवान का हिस्सा खाया। अभी हमने कहा तेरा तुझको अर्पण, जो कुछ भी दिया किसने दिया? भगवान ने दिया है, लेकिन फिर भी हम उनका हिस्सा क्या करते हैं? खा जाते हैं। और क्या कहते हैं? अरे ये तो हमारा है, घर कैसे चलेगा। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि जो कुछ भी है उसका वो उसकी सेवा में लग जाना चाहिए। तो जो लोग उसकी सेवा में लगाते हैं उनका जीवन आनंदमय रहता है। जैसे सुदामा जो थे उनके पास जो कुछ भी था वो उनकी सेवा में लगा रहे थे। धन तो भगवान ने दिया नहीं, लेकिन भगवान ने समय दिया था, उस समय को वो पूरा का पूरा लगाते थे भगवान की सेवा में। तो इस तरह से सुदामा के पास में खाने पीने के लिए बहुत ही मुश्किल थी। लेकिन एक दिन सुदामा की पत्नी ने कहा कि आप इतना परेशान घूमते हैं, ऐसा क्यों नहीं करते कि आप अपने मित्र के पास चले जाएं, जो कि कौन है, द्वारकाधीश। कहाँ रहते हैं? द्वारका में, सेक्टर 13 द्वारका में ही रहते हैं, पास नहीं है। तो द्वारका में चले जाएं और द्वारकाधीश से जाकर के मांगे कि हमारे घर में बहुत गरीबी है, हमारे घर में भजन तो है लेकिन भोजन नहीं है, हमारे घर में भजन तो है लेकिन भोजन नहीं है। तो उस भोजन को पाने के लिए सुदामा ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है मैं जाऊंगा, लेकिन कैसे जाऊं, खाली हाथ? किसी के घर जाना चाहिए तो कैसे जाना चाहिए? कुछ लेकर जाना चाहिए। क्या लेकर जाना चाहिए? हाँ जी, क्या लेके जाना चाहिए? ऐसा कुछ लेके जाना चाहिए जो कि आपके घर के सबसे मुख्य चीज हो। चावल, चावल मुख्य है आपके घर पे? सबसे ज्यादा मुख्य चीज क्या है? है सबसे ज्यादा मुख्य क्या है जीवन में? क्या है सबसे ज्यादा मुख्य? हाँ जी, भोजन। वो तो सुदामा के लिए भोजन जरूरी था। किसी के घर पे जाएं तो अपने घर से मिठाई बनाकर ले जाएं, अपने घर से जो भी आपके घर में महत्वपूर्ण वस्तु हो ले जाने चाहिए। जाते हैं तो ले जाते हैं कि नहीं? रक्षाबंधन पे जाएंगे भाई लोग बहन से राखी बंधाने, और अगर कुछ लेके नहीं आएंगे तो क्या होगा? बहन राखी बांधेगी, कहेगी पहले भैया क्या लाओ, 500 रुपए का नोट निकालो। तो बहन के लिए 500 रुपए दे देंगे, लेकिन वो रक्षा करने वाले कृष्ण के लिए हमारी जेब से कितना निकलता है? 10 रुपया, 5 रुपया, है ना? तो हमको क्या करना चाहिए? जो कुछ भी है वो भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। सुदामा ने अपनी पत्नी से कहा, मोहल्ले से इकट्ठा करके लाओ, चाहे गांव से इकट्ठा करके लाओ, अगर मुझे कृष्ण के पास जाना है तो क्या लेके आना है? सब कुछ लेकर के आना है। तो उन्होंने 4 मुट्ठी चावल अलग अलग जगह से, कहीं से काला, कहीं से लाल, कहीं से पीला, मिश्रित चावल इकट्ठा करके सुदामा की पत्नी ले आई सुशीला, और लाकर के कहा, ये लीजिए प्रभु, आप अपने मित्र के घर जा रहे हैं तो आप इससे जाइए। तो इस तरह से मित्र जो थे उनके वो ले आए, और सुदामा जब द्वारकापुरी पहुंचे, यहां से कितनी दूर है द्वारका आपके? मान लीजिए यहाँ सुदामा रहते हो, यहाँ से द्वारका पहुंचने में कितनी देर लगेगी? पैदल पैदल चले तो 1 हफ्ता लगेगा, 16 किलोमीटर। ये वाला द्वारका, यहाँ द्वारका में भगवान नहीं रहते हैं? तो चलते चलते वो आए और पहुंचे, और वहां जाकर क्या देखा, 16,108 महल बने हुए हैं। कितने महल? 2000 नहीं, 16,108। कितने? 16,108 रूपों में भगवान ने अपने को विस्तार करा, और हर महल में एक ही वक्त में 16,108 रूपों में विराजमान। ऐसे भगवान है। लोग कहते हैं हम भी भगवान बन जाएंगे, हम भी शादी करेंगे, भगवान ने करी थी तो 2, हम करेंगे 4। भगवान ने अपना विस्तार किया, आप विस्तार करेंगे? आपसे तो एक पत्नी नहीं पालन किया जाता, तो कैसे 16,000 रूपों में अपना विस्तार करेंगे? और जब विस्तार नहीं करेंगे तो फिर आप भगवान का नकल नहीं कर सकते हैं, भगवान की नकल नहीं। तो इसलिए जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले जिस खिड़की में झांका, उस खिड़की में महल था जहां पर रुक्मणी द्वारकाधीश थे। कहां थे? रुक्मणी द्वारकाधीश। तो उनके द्वारपाल ने उनको रोका, कहा कि कहां जा रहे हैं? कहा अपने प्रभु, अपने स्वामी, अपने मित्र कृष्ण से मिलना है। तो भगवान ने जाकर के, द्वारपालों ने भगवान को बताया, आपके मित्र सुदामा कहते हैं, आपके मित्र हैं, देखने में तो बहुत ही फटे हाल हैं, है ना? तो जैसे ही बताया, भगवान कृष्ण दौड़े दौड़े अपने अपने भक्त का नाम सुनते ही दरवाजे पे आए, उनका हाथ पकड़ा, और भगवान का मुकुट गिर गया, भगवान की उत्तरी गिर गई, भगवान के वस्त्र गिर रहे हैं। रुक्मणी कह रही, क्या हो गया? ऐसे तो आप कभी राज्यसभा में भी नहीं गए, इतने पागल तो आज तक आप कभी नहीं हुए, आज ऐसा क्या हुआ कि आप जो है दौड़े दौड़े चले जा रहे हैं? तो पता चला कि वहां पर कौन है? उनके भक्त सुदामा। सुदामा को बुलाया और घर में लाते ही उनको आसन पर बिठाया जहां खुद बैठते थे। और घर में एक विधि है, जिस गृहस्थ के घर में आते हैं पांव पखारे जाते हैं, मतलब पांव को पानी से धोया जाता है। तो यहाँ के भक्त ये भी कर रहे थे यहाँ पर ऐसा। तो इसी तरह से उन्होंने भी, भगवान कृष्ण ने सुदामा के पांव धोए और उनको सिंहासन पे बिठाया। और रुक्मणी जी पंखा झल रही थी। रुक्मणी देवी जो लक्ष्मी स्वरूपा है, स्वयं हजारों लक्ष्मियों को प्रकट करने वाली रुक्मणी सेवा कर रही है एक गरीब की। सोचिए, आज जो मुट्ठी चने सुदामा ने खाए थे वो आज उन्होंने लौटाने का ऋण ले लिया है, प्रण ले लिया है, कहा आज रिटर्न कर दूंगा। जिस दिन आप भगवान का रिटर्न करने का, भगवान का लौटाने का सोच लेंगे, उस दिन भगवान आपको कहां बिठाएंगे? सिंहासन पर बिठाएंगे आपको। भगवान सिंहासन में बिठाएंगे आपको, भगवान आपके पांव पखारेंगे, भगवान आपको आनंद मंगल प्रदान करेंगे। लेकिन आप भगवान का भगवान को दो। ये तन दिया है भगवान को दो, ये मन दिया है भगवान को दो, ये धन दिया है भगवान। तो भगवान के जो भक्त सुदामा थे, उन्होंने अपना तन भी दिया था, मन भी दिया था, लेकिन धन नहीं था। तो उन्होंने मोहल्ले से इकट्ठा करके दिया, लेकिन दिया। चार मुट्ठी चावल लेके गए तो भगवान कृष्ण ने पूछा, सुदामा मेरी भाभी ने कुछ तो भेजा होगा मेरे लिए खाने के लिए। कहा हाँ भेजा तो है, लेकिन आपके खाने योग्य नहीं है कृष्ण। कहा कुछ भी हो लेकिन मैं खाऊंगा जरूर, क्योंकि मैं कैसे खाता हूँ, भगवान कैसे ग्रहण करते हैं। यहाँ पे भगवान का भोग लग रहा है, आप देख रहे हैं। ये पर्दा इसलिए लगा है क्योंकि भगवान शर्मीले हैं, सबके सामने नहीं खाते हैं। तो भगवान कहते हैं मैं कैसे खाता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्या उपारितम्। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भगवान कहते हैं मैं पत्ता खाता हूँ, पुष्प खाता हूँ, फल खाता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जल पीता हूँ। अगर ये चार चीजें मुझे दोगे, लेकिन कैसे दोगे? भक्त्या उपहारतम, भक्ति के रूप में प्रेम पूर्वक दोगे। इसलिए भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिना कभी मैं कुछ भी लेता नहीं। भाव बिना कभी मैं कुछ भी लेता नहीं। भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बसार है। भाव बिना सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। तो क्या जरूरी है भगवान को देने के लिए? भाव है? आलू का भाव नहीं 8 रुपए किलो, 50 रुपए किलो, अभी टमाटर का भाव 100 रुपए किलो। बहुत लोग परेशान है, गांव के लोग तो नहीं परेशान होंगे, गांव में तो खुद ही उगा लेते हैं ना। कितने रुपए किलो मिलता है गांव में टमाटर है? कितने रुपए? 80। अरे आपका गांव तो पूरा शहर बन गया है। ठीक है, तो जो ये है भाव, भगवान उस भाव की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे आप किसी भी चीज को खरीदने जाते हैं तो पहले पूछते हैं सोने का भाव क्या है, पूछते हैं चांदी का भाव क्या है, सब्जी का भाव क्या है, जमीन का भाव क्या है। ऐसी भगवान कहते हैं इस भक्त का भाव क्या है, इस भक्त में भाव भी है या खाली अपनी जेबें भर रहा है मेरे नाम पर और मुझे कुछ देता नहीं है ना। तो इस तरह से भगवान कृष्ण का जो हिस्सा था चना सुदामा ने खाया, लेकिन जब वो हिस्सा लौटाने के लिए सुदामा लौटे तो भगवान ने उनको क्या दिया? उनको भगवान ने वो दिया जो व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। तब पहली मुट्ठी चावल भगवान ने अपने मुख में डाला तो कहा आह कितना भाव है इसके अंदर। टूटे चावल, कंकड़ वाले चावल, पीले चावल खाके भगवान कह रहे हैं आह ऐसा तो मेरे 56 भोग में भी आनंद नहीं है जैसा आनंद सुदामा तुम्हारे इस भाव वाले भक्त वाले इस चावल के अंदर है। उसको खाते ही भगवान ने कहा मैं तुम्हें 7 लोक अर्पित करता हूं। कितने लोक? 7 लोक अर्पित करता हूं। अरे 7 लोक अर्पित कर दिए। दूसरा मुट्ठी चावल जैसे ही खाने लगे और कहा 7 लोक, तो वो उनकी पत्नी बोलती है प्रभु 14 लोक अगर सुदामा को दे दोगे तो हम कहां रहेंगे, है ना। रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया और कहा सब कुछ सुदामा को मत दो। तो भगवान ने कहा ठीक है, पत्नी की बात माननी चाहिए। पत्नी की बात नहीं मानते तो फिर बाद में बहुत दुख झेलने पड़ते लोगों को, है ना। तो पत्नी की बात माननी चाहिए। तो पत्नी की बात मानी और उन्होंने क्या किया, उन्होंने तुरंत ही छोड़ दिया और कहा कि ठीक है सुदामा आप भोजन ग्रहण करिए। उनको 56 भोग खिलाए और 56 भोग खा करके कहा कि अच्छा हरे कृष्णा धन्यवाद, धन्यवाद आप आए सुदामा। तो सुदामा सोचने लगा कि किस मुंह से भगवान से मांगूं। अभी हमने चर्चा किया था कि हमें भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए, लेकिन सुदामा सोच रहे थे कि नहीं मांगूंगा तो घर पे पत्नी क्या करेगी, लड़ाई करेगी, झगड़ा करेगी, है ना। हिंदुस्तान की माताएं तो फिर भी अच्छी है लेकिन विश्व में आजकल बड़ा खराब हाल है, है ना। सारी माताएं लड़ाई झगड़ा बहुत करती है, बात बात पर डाइवोर्स हो जाते हैं आजकल, है ना। तो आप भी देखते होंगे शहरों में आपके बेटे बच्चे आदि होंगे बताते होंगे या टीवी पे, टीवी तो आजकल सारी खबर देता है कि आजकल लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, है ना। बात बात पर लोग झगड़ते हैं क्योंकि अहंकार है लोगों के जीवन में। तो सुदामा सोचने लगे कि क्या करूं, कैसे किस मुंह से मांगूं। तो उन्होंने कहा कि मैं मांग तो सकता नहीं हूं, और फिर उन्होंने कहा कि मांगूंगा नहीं तो घर पे मेरी पत्नी मुझे नहीं छोड़ेगी, मैं क्या करूं। तो अब सुदामा चलते चलते सोचने लगे कि एक काम करता हूं, इनको बोलता हूं कि हमारे पास खाने पीने रहने की व्यवस्था नहीं है। तो उन्होंने कहा, कृष्ण भगवान ने फिर भी पूछना चाहा कि सुदामा नहीं बोल रहा है, भगवान तो अंतर्यामी है सबके मन के जानते, कहा चलो मैं पूछ लेता हूं सुदामा घर में कोई दिक्कत तो नहीं है। अब तो मुख के ऊपर बात आ गई कि बहुत दिक्कत है, बड़ी परेशानी है प्रभु, खाने पीने को नहीं है, लिस्ट लेकर बैठी है पत्नी, इतनी बड़ी लिस्ट बना के भेजा है, कुछ नहीं बोल पाए, मुंह से आवाज ही नहीं निकली भगवान के बोलने के बाद में। तो इस तरह से भगवान के जो भक्त हैं उनके मुख से आवाज निकलती नहीं है, क्योंकि जो भक्त है वो कैसा होता है, भक्त ऐसा होता है कि वो छोटी मोटी चीजों से विचलित नहीं होता है, छोटी मोटी चीजों से विचलित, उसका भगवान के ऊपर पूर्ण भरोसा होता है। रक्षति ते कृष्णा ना रक्षति ते कृष्णा, भगवान रक्षा करेंगे तो भी कृष्ण है और रक्षा नहीं करेंगे तो भी कृष्ण है। तो इस प्रकार से सुदामा चलने लगे और चलते चलते सुदामा ने भगवान कृष्ण को प्रणाम किया और कुछ ना बोलते हुए बिना कुछ मांगे वापस कहां आ गए, अपने गांव में आए। और जब अपने गांव में वो पहुंचे तो वहां की साजो सज्जा देख करके हैरान रह गए। जैसे आप मान लीजिए यहां से जाएं द्वारका और पीछे अपने घर को ताला डालकर जाएं और लौट करके आए तो पता चले वहां पर घर ही नहीं है, तो क्या सोचेंगे आप, कहाँ चला गया घर, अच्छे गए आज मंदिर में, चोरी हो गया सारा सामान, कुटिया चोरी हो गई, मकान चोरी हो गया। वहां पर एक महल था, पर लगता है किसी ने मेरी जमीन बेच दी और इस पर किसी रईस आदमी ने मकान महल बना लिया है। जब वहां देखा तो वहां पर द्वारपाल खड़े थे, दास दासी खड़े थे और स्वर्ण के जैसा सोने के जैसा चमकता हुआ महल था, और ऐसे महल के अंदर कुंड ही कुंड थे, सोने के लिए सोने के सिंहासन थे, सोने के बेड लगे हुए थे, पुष्प की खुशबू वहां पर थी, अगरों की खुशबू वहां पर थी। और ये देखकर के सुदामा हैरान हो गए, बोले जो कुछ भी हो ये घर मेरा घर नहीं हो सकता, मेरी जमीन है लेकिन मेरा घर नहीं है। अब बड़ा परेशान था, द्वारपाल से पूछा भैया किसका मकान है, तो द्वारपाल बोले ये एक बहुत बड़े राजा है, राजा सुदामा का मकान है। राजा कहा, राजा सुदामा तो पता नहीं कौन है, मैं तो ब्राह्मण भक्त सुदामा था। अच्छा ये जो सुदामा जी हैं इनके घर में कितने लोग हैं, कहा 3 बच्चे हैं एक पत्नी है। पत्नी का क्या नाम है राजा की, कहा रानी सुशीला। रानी सुशीला, अरे नाम तो मैचिंग मैचिंग है, बिल्कुल वैसा ही है जैसा मेरी पत्नी का था। कहा रानी से एक बार मुलाकात हो सकती है, मेरी जमीन पर मकान क्यों बनाया। कहा राजा से मुलाकात हो सकती है, कहा राजा तो दूसरे राजा से मिलने गए हैं, द्वारकाधीश द्वारका राजा से मिलने। कहा अच्छा, और रानी, कह रानी घर में है, हम बुलाते हैं। रानी साहिबा, एक ब्राह्मण आया है, कह रहा है आपसे मिलना चाहता है, क्या नाम है। कहा बता रहा है ब्राह्मण सुदामा। रानी दौड़ी दौड़ी आई, देखा तो साड़ी पहन रखी है, गहने पहन रखे हैं, मुकुट लगा रखा है, हाथों में सोने के कंगन हैं, और बच्चों ने भी सोने के वस्त्र पहन रखे हैं, चांदी के वस्त्र हैं, और अपने पिता को आके गले लगा लिया। पिताजी क्या मित्र हैं आपके, क्या मित्र हैं आपके, वाह इतने सुंदर मित्र तो किसी के नहीं हो सकते हैं, मजा आ गया आपके मित्र को देख करके। आप जैसे ही गए, आपने बस कदम निकाला था, तुरंत ही 10 लोग आए और कहा कि जल्दी कुटिया खाली करिए, यहाँ महल बनाना है। और हमारे देखते देखते ही पल भर में यहाँ महल बन गया। मतलब सुदामा जब द्वारका पहुंचे भी नहीं थे, भगवान ने उनका महल पहले ही हरी वो क्यों बनाया था, क्योंकि आज उसने जो चने खाए थे वो चनों को लौटाने का दिन आ गया था। अच्छा, भगवान जब सुदामा जब भगवान के पास पहुंचे, तो भगवान ने उनको क्यों नहीं बताया कि मैंने आपके लिए एक महल बनाया है, क्यों नहीं बताया, बता सकते हैं क्यों नहीं बताया कि मैंने आपके लिए महल बनाया है। भगवान ने इसलिए नहीं बताया, भगवान कह सकते थे सुदामा आप आए, आपके मन की इच्छा मैं जानता हूं, आपको एक महल की आवश्यकता है, आपको धन धान्य की परेशानी है, तथास्तु मैं तुम्हें फर देता हूं एक महल। ऐसा नहीं किया भगवान। पूरे रास्ते सुदामा यही सोचते रहे, मैंने मांगा भी नहीं और घर जाके पिटाई भी होने वाली क्योंकि मिला भी नहीं, है ना। लेकिन वो भगवान पर उनका पूर्ण विश्वास था। भगवान ने इसलिए नहीं दिया क्योंकि भगवान ने कहा सुदामा ने अपनी क्षमता से अधिक दान मुझको दिया है। कितना दान दिया है, अपनी क्षमता से अधिक दान मुझको दिया है। और हम देते हैं तो कब देते हैं, अपनी क्षमता के अनुरूप दान भी नहीं देते हैं। भगवान ने कहा अगर मैं इसको रिटर्न गिफ्ट दूंगा, मैं इसको दोबारा से दान दूंगा तो कितना दूंगा, जितनी मेरी क्षमता है। और भगवान की क्षमता तो पूरा ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड भी दे देंगे तब भी अपनी क्षमता से ज्यादा दे नहीं सकते, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड के ठाकुर जी महान भगवान हैं, ब्रह्मांड नायक कृष्ण। तो ठाकुर जी अपनी क्षमता से अधिक दे सकते हैं, क्षमता है उतना ही तो देंगे, और उनकी क्षमता में पूरा ब्रह्मांड है। लेकिन सुदामा की क्षमता में एक चावल का दाना भी नहीं था, और उन्होंने घर घर मांग करके क्या किया, चावल का दान भगवान को दिया। तो जो अपनी क्षमता से अधिक लेके गया तो भगवान ने सोचा अरे मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, इसको अगर मैं अपनी क्षमता से ज्यादा लाया है और क्षमता से अधिक मैं दान दे दूंगा, क्षमता के अनुरूप तो दे दूंगा, क्षमता से अधिक दे नहीं पाऊंगा तो मेरा तो अपमान हो जाएगा। इसलिए भगवान ने चुपचाप कहा धन्यवाद सुदामा तुम यहाँ आए। और जब सुदामा चल दिए और जब वापस पहुंचे तो उनको भगवान ने महल दिया, क्योंकि छुपके छुपके भगवान ने वो महल बना दिया। कहा सामने सामने देना अच्छा नहीं लगता है, जैसे कई लोग होते हैं उनको आप 1100 रुपए का गिफ्ट दो तो रिटर्न में सोचते हैं, ऐसे होता है ना, बहन बच्चे ताऊ ताई मिलते हैं रक्षाबंधन त्योहारों पे, तो कोई 1100 का दे दे तो सामने के सामने आदमी सोचता है इन्होंने तो 1100 दे दिया, हम तो 1100 दे नहीं पाएंगे तो हम क्या दे दें, हम बाद में 100 रुपए पकड़ा देंगे चलते वक्त चुपके से, है ना। तो वैसे ही भगवान ने सोचा सामने सामने तो मैं दे नहीं पाऊंगा क्योंकि इसने क्षमता से अधिक चावल दिया है और मेरी क्षमता में तो पूरा ब्रह्मांड में क्या दूं। तो भगवान ने कहा चुपके से एक महल दे देता हूं, तो चलते चलते भगवान ने उनको एक महल दे दिया। तो भगवान अगर चुपके चुपके से भी देंगे तो भी क्या देंगे, एक स्वर्ण महल देंगे, है ना। इसीलिए कहा गया है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण, भगवान जो है वही आपकी सारी अभिलाषा पूर्ण कर सकते हैं। भगवान कहते हैं बाद में सुदामा जो थे, आपने इतनी कथा तो सुनी है, इसके आगे की कथा सुनिए, भागवत में वर्णन है। जब भगवान ने सुदामा को पहले क्यों नहीं दिया, भाई इतने साल तक गरीब थे, भगवान उनके मन में बैठे थे, उनको कहते ला दे चावल दे दे और ले ले मेरा मित्र है तू महल ले ले, भगवान ने पहले क्यों नहीं दिया। भगवान ने पहले इसलिए नहीं दिया क्योंकि पहले भगवान उनकी भक्ति की परीक्षा ले रहे थे। तो भगवान पहले भक्ति की क्या लेते हैं, परीक्षा लेते हैं। भगवान कहते हैं जिस व्यक्ति में से ये चला जाता है, अरे तू मैं
नहीं मेरा नहीं, ये तन भी किसी का है दिया। तू नहीं मैं नहीं, ये तन भी किसी का है दिया। जो भी मेरे पास है ये धन भी किसी का है दिया।
किसका दिया हुआ है? हाँ जी, किसका दिया हुआ धन है आपके पास? ठाकुर जी का।
जो भी मेरे पास है वो धन है किसी का दिया। देने वाले ने दिया वो भी दिया बड़े शान से, देने वाले ने दिया वो भी दिया बड़े शान से। लेने वाला कह उठा है ये मेरा बड़े अभिमान से, लेने वाला ये है मेरा कह उठा अभिमान से।
देने वाले ने तो दिया कैसे, बड़े शान से दिया, ये तन भी उसी का दिया, ये धन भी उसी का दिया, लेकिन लेने वाला क्या बोला? लेने वाला कह उठा ये है मेरा बड़े अभिमान से।
मेरा कहना वाला मन भी किसी का है दिया।
जो ये कहते हैं मैं हूँ, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा परिवार है, ये मैं हूँ, ये मेरा है।
मैं हूँ मेरा कहने वाला मन भी किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं ये मन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो हमेशा रह सकता नहीं, जो भी अपने पास है वो हमेशा रह सकता नहीं। कब बिछड़ जाएगा इतिहास कह सकता नहीं।
कोई बता सकता है कब आपका शरीर छूटेगा, कब आपका धर्म छूटेगा, कब आपके प्राण छूटेंगे?
कब बिछड़ जाएगा ये कोई इतिहास कह सकता नहीं। जिंदगानी का मधुवन है किसी का दिया, जिंदगानी का मधुवन है किसी का दिया। मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया। देने वाले ने दिया वो भी दिया बड़े शान से, लेने वाला ये है मेरा कह उठा अभिमान से। लेने वाला है ये मेरा कह उठा अभिमान से।
अभिमान से हम क्या बोलते हैं, ये क्या है?
मेरा है।
लेकिन भगवान तब तक नहीं देते जब तक व्यक्ति बोलता है ये मेरा है। आपकी पॉकेट में जो धन है वो कहेगा मेरा है तो दुख जाने वाले नहीं। इसलिए ब्राह्मण सुदामा के भी नहीं गए। भगवान ने कहा जब इसकी भक्ति की पराकाष्ठा हो जाएगी, जब तन पर कीड़ा काटेगा तो दुख नहीं होगा, जब पैसा चोरी हो जाएगा तो दुख नहीं होगा, किसी के प्राण छूट जाएंगे तो दुख नहीं होगा, भोजन नहीं मिलेगा तब दुख नहीं होगा, तब मैं इसको सब कुछ दे दूंगा। ये भगवान ऐसे हैं। इसीलिए भगवान का नाम है हरि। हरि, हरि का मतलब है हरिश्यामि अहम सर्वम। पहले सब कुछ लेता हूँ और फिर जो देता हूँ वो संभाले नहीं संभलता है ना। ऊपर वाला जब भी देता देता छप्पर, आजकल तो लेंटर फाड़ के देता है ना, छप्पर तो रहा नहीं, सभी जगह लेंटर फाड़ के देता है। ऊपर वाला जब भी देता देता लेंटर फाड़ के, ऊपर वाला जब देगा तो बहुत कुछ देने वाला है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको अपना तन, अपना मन, अपना धन सब भगवान की सेवा में लगाना है। तो जब ब्राह्मण सुदामा ने सब कुछ लगाने के लिए सोच लिया तब भगवान ने उनको महल दिया। अब उस महल में जिसमें सोने के गद्दे हैं, सोने के पलंग हैं और वहां पर बहुत कुंड हैं जहां पर सुगंध वाले फूल हैं, दास दासी हैं, वहां पर सुदामा कैसे रहते हैं सुनिए।
किश्चित करोति उरो अपि यत स्वं गताम् सुहृतं कृतं फाल्गो अपि भूरि कारि मयोपणीतं तथा केकमुष्टे तथा गृहीतं प्रतियुक्तं महान आत्मनः।
भगवान अपने बड़े से बड़े वर को तुच्छ मानता है भगवान का भक्त, किंतु अपने शुभ चिंतक भक्त द्वारा दी गई तुच्छ से तुच्छ सेवा को भी बहुत बड़ा मानता है। तो भगवान का जो भक्त है वो भगवान को अपनी सेवा देता है, वो भगवान को कुछ भी दे दे भगवान के लिए कम है, लेकिन अगर भाव नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसे जो सुदामा ब्राह्मण है वो अपना सबसे ज्यादा मुख क्या दे रहे थे? भगवान को अपना मन दे रहे थे, है ना, अपना तन दे रहे थे। अपने मन से सदा क्या बोलते थे?
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
सभी बोलिए जोर से तो इस तरह से भगवान का जो भक्त है वो भगवान का भजन करता है, है ना। सुदामा भी भगवान का भजन कर रहे थे और भजन करते करते उनको भगवान ने सब कुछ दिया, लेकिन अब ऐसी स्थिति है कि अब बस भाव रह गया है, भक्त का मन रह गया है, लेकिन चटाई बिछा के उस महल में सोते हैं, उस महल के आसक्ति नहीं रही। अब उस तब भगवान ने दिया, ऐसी परिस्थिति में दिया जब चाहिए ही नहीं, है ना। भगवान तब दे देते हैं जब चाहिए नहीं। तो हम देखते हैं कि भौतिक संसार में देवी देवता तब देते हैं जब हमें चाहिए, लेकिन भगवान तब देते हैं जब हमें नहीं चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान आपके परम पिता है। अहम बीज पदह पिता, मैं कौन हूं? सबको बीज प्रदान करने वाला पिता हूं। इसलिए मान लीजिए आपका गला खराब हो, आपका गला खराब हो और आपका बच्चा आए और कहे पिताजी पिताजी आइसक्रीम चाहिए, दिलवाएंगे? माता माता आइसक्रीम चाहिए, दिलवाएंगे? क्या कहेंगे? बच्चा कहेगा मेरे पिता मेरे माता गंदे हैं, आइसक्रीम नहीं दिलाते। वो कहीं से 10 रुपए उठाएगा और जाकर एक आइसक्रीम बेचने वाले को कहेगा ये लीजिए 10 रुपए और मुझे आइसक्रीम दे दीजिए। वो देगा कि नहीं देगा? क्यों दे देता है? क्योंकि उसको 10 रुपए से मतलब है लेकिन आपके गले से मतलब नहीं है। लेकिन ठाकुर जी कैसे हैं? ठाकुर जी ऐसे हैं कि वो तभी देते हैं जो चीज आपके गले को सही रखे, जो आपके स्वास्थ्य को ठीक रखे, जो आपके मन को ठीक रखे। भगवान के भक्त कभी गरीब नहीं रहे। भगवान के भक्तों को जितनी लक्ष्मी वर्षा होती है, इतनी महान महान लोगों को भी आप सोच नहीं सकते कितनी लक्ष्मी वर्षा होती है। ध्रुव महाराज को भगवान ने 10,000 सालों का राज्य दिया, प्रहलाद महाराज को राज्य दिया, सुदामा ब्राह्मण को सुदामा पुरी दी। भगवान अपने भक्त की सारी अभिलाषा पूर्ण करते हैं, लेकिन परीक्षा थोड़ी अधिक है। अब बड़ी चीज प्राप्त करने में थोड़ा समय तो अधिक लगता है, तो इस तरह से समय लगा। और भगवान ने जो थे उन्होंने क्या कहा? भगवान कहते हैं मैंने कृष्ण कहते हैं मैंने सुदामा तुम्हें अपना गुरु रूप में स्वीकार किया है। किस रूप में? गुरु रूप में स्वीकार किया है। तो भगवान कहते हैं तस्मे देवस्य हरेर्यज्ञे पते प्रभो ब्राह्मणो प्रभो देवा नातेभ्यो विदते परम। तस्य वे देवदेवस्य हरेर्यज्ञे पते प्रभो ब्राह्मणो प्रभो देवा नातेभ्यो विदते परम। भगवान कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें क्या स्वीकार किया है? भगवान कहते हैं हरि समस्त ईश्वरों के ईश्वर हैं, समस्त यज्ञों के स्वामी तथा सृष्टि के परम शासक हैं, लेकिन वे संत ब्राह्मणों को अपना स्वामी मानते हैं क्योंकि उनसे बढ़कर कोई अन्य देव नहीं रह सकता। जो भक्तों का वैराग्य है, जो भक्तों के जीवन का समर्पण है, उसके आगे भगवान भी अपना नतमस्तक कर लेते हैं, भगवान भी अपना सर उसके आगे झुकाते हैं जो कौन होता है? भगवान का भक्त होता है। ऐसी एक भक्ति कथा आती है। एक बार राजा अकबर, अकबर का नाम सुना है आपने? कितने लोगों ने सुना है अकबर का नाम? कौन थे अकबर? मुगलों के राजा। कहां रहते थे? आगरा में रहते थे। आगरा के महल के पीछे, लाल किले के पीछे आज भी यमुना नदी बहती है। तो उस यमुना नदी के पास उनकी पत्नी जोधाबाई ने कहा कि मुझे चाहिए फूलों की माला, मैं आपके गले में पहनाना चाहती हूँ अकबर। तो राजा अकबर ने कहा जाओ सिपाही एक फूल की माला ले आओ। तो फूल की माला लेने के लिए सिपाही जब गया तो वहां पर फूल बेचने वाले के सभी फूल समाप्त हो चुके थे, लेकिन वहां पर एक ही माला बची थी। सिपाही जब फूल माला लेने लगा इतने में एक ब्राह्मण पहुंच गए। वो ब्राह्मण भक्त अपने घर में अपने भगवान गोपाल जी को एक माला पहनाना चाहते थे। भक्त चाहता है कि मैं अपने भगवान का श्रृंगार करूं, अपने भगवान की उपासना करूं, भगवान का भजन करूं। तो उन्होंने कहा कि कितने की माला है? अब उस समय में 1 पैसे की माला आती थी। कितने की? 1 पैसे। एक पैसे की वो खुशबूदार मोगरे और गुलाब की माला ऐसी माला रही होगी, और ऐसी माला उन्होंने कहा भगवान की, ब्राह्मण ने कहा मुझे दो, सिपाही ने कहा अरे राजा के यहां से आया हूं मुझे दो, मुझे मुझे मुझे, दोनों बहस करने लगे। फूल वाला कहता है जो दादा देगा पैसा उसको दूंगा, जो ज्यादा पैसा देगा उसको दूंगा। तो फूल वाले ने कहा ज्यादा पैसा, तो सिपाही बोला एक रुपया, तो वो जो ब्राह्मण था वो बोला एक रुपया, हाँ मैं दूंगा दो रुपया। तो हंसने लगा फूल वाला, कहा तेरे घर में खाने को है नहीं तो दो रुपए देगा, कहां से देगा दो रुपए। तो बोला कि वो मैं कहीं से भी लाऊं पर मुझे दो रुपए में ये माला चाहिए भगवान के लिए। सिपाही बोला दस रुपया, तो भक्त बोला पचास रुपया। तो अभी तो सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए, भाई यहां पर मदारी वाला है तो दस लोग इकट्ठे होते हैं, अगर यहां पर ऐसी कोई लीला हो रही हो तो सारे के सारे इकट्ठे होंगे कि नहीं होंगे, सब इकट्ठे हो जाएंगे, सब इकट्ठे हो गए और देखने लगे पचास रुपया, सब हैरान थे। तो सिपाही बोला भैया इस ब्राह्मण का तो दिमाग पागल है, फिर भी मैं मजे लेता हूं। कहा मैं दूंगा अस्सी रुपया। तो भक्त बोला, ब्राह्मण कहता है सौ रुपया। आज भी अगर हम बोले आप सबको सौ सौ रुपए देने हैं तो आप लोग आज के जमाने में सौ रुपए नहीं दे पाएंगे, दे पाएंगे सबको? ठाकुर जी को जन्माष्टमी में कम से कम सौ रुपए सबको देना चाहिए, कम से कम। उस व्यक्ति ने 500 साल पहले सौ रुपए देने का वादा कर दिया ठाकुर जी की एक माला पाने के लिए। तो उसने क्या कहा, वो सिपाही बोला भैया इसका तो दिमाग खराब है, राजा अकबर मुझे सूली पे चढ़ा देगा, कहेगा एक पैसे की माला सौ रुपए में, अरे भैया तू तो राजकोष खाली करवा देगा, चल यहां से भाग, उसे भगा दिया। ब्राह्मण बोला अब वो तो चला गया, भैया मुझे दे दो। अब वो फूल वाला बोला यमुना जी में फेंक दूंगा फूल के टुकड़े टुकड़े, लेकिन तुझे दूंगा तो सौ रुपए में दूंगा, ये नहीं कि एक रुपए में दे दूंगा या एक पैसे में दे। तो ब्राह्मण बोला चिंता क्यों करते हो, ठाकुर जी के नाम पर बाजी लगाई है, अब तो ठाकुर जी ही रक्षा करेंगे। गया जाकर के घर पे अपनी पत्नी को बोला तुम्हारे पास कितने गहने हैं। पत्नी बोली मेरे हाथ में एक कंगन है, कान में दो कुंडल है, इनको बेच लेंगे, घर में थोड़े बर्तन हैं और हमारी कुटिया है, इसको अगर चढ़ा दें तो फिर टोटल बेच करके सौ रुपए इकट्ठे हो सकते हैं। तो कहा फिर जल्दी बेचो। कहा क्यों, कोई नया मकान मिला है? कहा यहां नहीं मिला है, वहां मिला है, नया मकान भगवत धाम में मिल गया है। तो उसने कहा अच्छा ठीक है। उसने तुरंत अपने सारे कंगन उतारे, बर्तन उतारे, बेचे और सौ रुपए इकट्ठे करके पहुंचा और सौ रुपए में वो माला खरीद ली, सब कुछ अर्पित करके एक माला ले ली। वो माला ला करके अपने गोपाल जी के विग्रह को चढ़ाई और चढ़ाकर भजन करने लगा। उसी वक्त वृंदावन में गोपीनाथ भगवान का पुजारी भगवान का भजन कर रहा था, और क्या हुआ, गोपीनाथ भगवान के विग्रह की गर्दन जो थी, पत्थर की मूर्ति की गर्दन नीचे झुक गई, नीचे झुककर लटक गई। तो सारे ब्राह्मण जितने भी थे वो परेशान हैरान हो गए, ऐसा क्या हुआ कि भगवान की जो गर्दन है पत्थर की वो नीचे लटक गई, हमसे क्या अपराध हो गया। तो सभी ने अपराध क्षमा याचना करने के लिए भगवान से विनती करी, भगवान प्रकट हुए और भगवान प्रकट होकर बोले कि मेरी गर्दन इसलिए नहीं झुकी कि किसी ने अपराध किया है, मेरी गर्दन इसलिए नहीं झुकी कि मेरी गर्दन टूट गई है, मेरी गर्दन इसलिए झुक गई है क्योंकि ये जो हार है ये बहुत भारी है, इस हार में सौ रुपए से ज्यादा उसके भाव हैं, इस हार में सौ रुपए से ज्यादा उसकी चेतना है, सौ रुपए से ज्यादा उसकी विनम्रता है, सौ रुपए से ज्यादा उसका समर्पण है, और उसके कारण मेरी गर्दन आज इस हार से झुक गई है। तो सभी ने गोपीनाथ भगवान के विग्रह के जो पुजारी थे सभी उस ब्राह्मण को ढूंढते ढूंढते आए और पता किया कि भाई ऐसा कौन सा ब्राह्मण के हार से गर्दन झुक गई। तो भगवान ने स्वप्न में आके कहा कि ये ब्राह्मण है, और उस ब्राह्मण का पता चला, और बाद में उस ब्राह्मण के घर में बिल्कुल सुदामा जी की तरह उनको धन धान से पूर्ण कर दिया गया भगवान की वजह से। एक बार सब कुछ देना पड़ता है, उसके बाद में जो लौटता है उसको रखने के लिए हमारे हाथ भी पूरे नहीं पड़ते हैं, लेकिन पहले देना पड़ता है। इसलिए भगवान कहते हैं भगवद गीता में कि चार प्रकार के कर्म, तीन प्रकार के कर्म भगवान कहते हैं सदा करने चाहिए। यज्ञ दान तप कर्म न त्याजे कर्म एव तत्।
यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणां यज्ञदान तपः कर्म नात्याजे कार्यम् एव ततः यज्ञदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणां
यज्ञदान तपः कर्म यज्ञ नहीं छोड़ना चाहिए, दान नहीं छोड़ना चाहिए और तपस्या नहीं छोड़नी चाहिए। तो आज ये अंतिम प्रसंग बताकर हम कथा को विराम देंगे और इसके बाद में यहाँ पर आरती होगी, कथा हो, कीर्तन होगा और फिर साथ में प्रसाद होगा आप सभी के लिए। और सभी लोग जाने से पहले ठाकुर जी को जो हो सकता है अपनी क्षमता से अधिक भगवान को एक बार देखकर देखो और उसके बाद भगवान की कृपा देखो कैसे बरसती है। तो यहाँ पर भक्तों ने यहाँ पर टेबल लगाया है, आप वहां मिल सकते हैं, उनको दान दे सकते हैं, उनसे भगवत गीता रूपी भागवत रूपी ग्रंथ खरीद सकते हैं। और इसके पीछे जो दान है, जो धन है, इससे मंदिर बन रहा है, इससे मंदिर में जन्माष्टमी महोत्सव बनेगा और आप सभी निमंत्रित हैं, आप आके 15 अगस्त को उस दर्शन कर सकते हैं। आपको यहाँ पर पर्ची भी मिलेगी उसके साथ साथ में, तो आपको वहां पर सारा इंतजाम पता चल जाएगा। तो कहते हैं यज्ञ दान तपह कर्मम, तीन प्रकार के कर्म हैं। पहला यज्ञ, क्या नहीं छोड़ना चाहिए जीवन में? यज्ञ नहीं छोड़ना चाहिए। तो कौन सा यज्ञ करना चाहिए कलयुग में, कौन सा यज्ञ करना चाहिए, कौन बताएगा? हाँ, हरि नाम यज्ञ करना चाहिए, है ना। कलो संकीर्तन प्राय यजन्ते ही सुमेधसा। परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, उन्होंने पूछा कि संसार में इतने सारे दोष हैं, इन सारे दोषों से मुक्ति का क्या उपाय है? तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कलो दोषे निधे राजन अस्ति को महान गुणा, कलो दोषे निधे राजन अस्ति एको महान गुणा, कीर्तन्या देवा कृष्णस्य मुक्त संगम परम व्रजे, कीर्तन्या देवा कृष्णस्य मुक्त संगम परम व्रजे। कलो दोषे निधे राजन, कलयुग में दोषों का समुद्र है, निधि है, हर घर में दोष मिल जाएगा, शराब का दोष, लड़ाई का दोष, गुस्से का दोष, तमाकू का दोष, बीड़ी का दोष, बहुत तरह के दोष मिलेंगे। कले दोषे निधे राजन, भरा पड़ा है दोष ही दोष, कहीं मर्डर है, कहीं चोरी है, कहीं लूट मारी है। कले दोषे निधे राजन अस्ति एको महान गुणा, इसके बाद भी एक महान गुण है, कौन सा गुण है? कीर्तन या देव कृष्ण से, जो कृष्ण का कीर्तन करता है, मुक्त संगम परम व्रजेत। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी लोग हाथों को ऊपर करके मुंह से बोलिए, अगर नहीं बोलेंगे तो ये शरीर यहीं छूटने वाला है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग में हरिनाम संकीर्तन यज्ञ, कहते हैं कि जो आपके कान हैं ये यज्ञ की वेदी है, ये यज्ञ कुंड है और इस यज्ञ कुंड की सामग्री है हरे कृष्णा महामंत्र। और ये जीभ है आपकी, ये जीभ है चम्मच जिससे सामग्री उठा करके यज्ञ में डालते हैं, इससे भरना है, ऐसे करके जिभा से मंत्र को पूरा भरना है। मुंह फूलना चाहिए आपका, जितने भी बैठे हैं, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, बच्चा हो, माता हो, सबको अपना मुंह में यज्ञ सामग्री भरना चाहिए, है ना। और भर करके चम्मच से जिभा से कहां डालना चाहिए? कान के कुंडल, कान के कुंड में डालना चाहिए। फिर से एक बार देखें, भर करके आप डाल पाते हैं कि नहीं डाल पाते हैं? मुंह को पूरा भरिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तरह से यज्ञ बताया गया है कलयुग में, तो आप लोग करेंगे यज्ञ कि नहीं करेंगे? कितने लोग करेंगे यज्ञ आज से? देखिए, भगवान ने 24 घंटे दिए हैं और 24 घंटे में फ्री की ऑक्सीजन भी दिया है। अगर हॉस्पिटल जाना पड़े तो हमारे बीच में डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर सौरभ यहीं रहते हैं, आपके रावता के डॉक्टर हैं, इनसे पूछ सकते हैं। अपोलो हॉस्पिटल में एक घंटे ऑक्सीजन का 24,000 रुपया लगता है, एक घंटे ऑक्सीजन का। जिस भगवान ने 24 घंटे ऑक्सीजन दिया है, उस भगवान को 24 घंटे जो ऑक्सीजन भगवान दिए हैं, उन भगवान के लिए क्या हमारे पास 24 मिनट नहीं है? 24 मिनट है कि नहीं है? तो अब से रोज क्या करना चाहिए, दोनों हाथ उठा करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जोर से बोलो तो ये यज्ञ करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपना 24 घंटे से 24 मिनट ठाकुर जी की सेवा के लिए निकालें। अब आती है बात, ये तो हो गई बात मन की, ये तो बात हो गई मन की, है ना, मन बुद्धि अहंकार, है ना, तन मन धन। तो ये तो बात हो गई मन की, मन कैसे लगाएंगे ठाकुर के चरणों में यज्ञ करके, हरे नाम का यज्ञ करके। अब आती है धन की बारी, तो भगवान कहते हैं यज्ञ दान, भगवान को दान देना चाहिए। दान देने के लिए तीन प्रकार का दान बताया गया है। पहला दान है सतोगुणी दान, दूसरा दान है रजोगुणी दान, तीसरा दान है तमोगुणी दान। जब हम किसी को, आपने देखा होगा, वोट की अभिलाषा में कोई मिनिस्टर आता है, कहता है वो, आप मुझे वोट दो, मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए कुछ दूंगा, तो वो उसके पीछे इच्छा जुड़ी होती है। कभी कभी कई जगह देखते हैं मदिरा का सेवन भी कराते, कहते हैं ये लो मदिरा लो, हमें वोट दे दो, ये दान है, फ्री में मदिरा मिलती है। या कहते हैं 100 रुपए ले लो, हमको वोट दे दो, ये जो दान है ये तमोगुणी दान है। और एक दान होता है रजोगुणी दान। रजोगुणी दान कैसा होता है, दान देने के बाद में अपना नाम लिखवाते हैं पंखे के ऊपर। एक बार एक जगह कथा चल रही थी और पंखा भी चल रहा था, हम बैठे थे, तो वहां पर एक व्यक्ति अपने बच्चे को लेके आया भागवत कथा में और कहता है पंखे बंद कर दिए सारे। मैंने कहा बहुत गर्मी है प्रभु जी, चला दीजिए पंखा। कहते हैं देखिए महाराज जी, हमने पंखे इसलिए बंद किए हैं क्योंकि ये पंखे हमने दान दिए हैं। मैंने कहा तो दान दिए तो बंद क्यों कर दिया, आपने चलाने के लिए तो दिए हैं। कहा इन पंखों की पंखड़ियों पे बच्चों की दादी का नाम लिखा है, स्वर्गवती कमला देवी, और वो चलते वक्त दिखाई नहीं दे रहा, बच्चे कह रहे दादी का नाम कहाँ है, दिखाओ तो पंखा बंद कर दिया। तो इसलिए ऐसा दान जो होता है कैसा दान होता है, रजोगुणी दान होता है। और सतोगुणी दान कैसा होता है कि हम इस हाथ से दें तो दूसरे हाथ को पता ना चले, जो कुछ भी है दिया है उसने दिया है और उसकी सेवा में लग जाना चाहिए। यह है दान, यज्ञ दान, तपह और तपस्या। तपस्या कभी नहीं छोड़नी चाहिए। तपस्या कौन सी तपस्या है, सुबह जल्दी उठना, जल्दी उठ करके भगवान की आरती करना, भगवान का भजन गाना, भगवान को भोग लगाना, ये तपस्या है। कलयुग की तपस्या है भगवान की परिक्रमा करना, भगवान के दर्शन के लिए मंदिर तक जाना, वो तपस्या करनी पड़ती है। भगवान के लिए पुस्तक वितरण करना, है ना, हमारे एक भक्त हैं बैठे हैं आपके पीछे, सर्व पूज्य गोपीनाथ प्रभु, उम्र से वरिष्ठ हैं पर प्रभु जी सड़क पर खड़े होकर के जाकर के एक एक पुस्तक बांटते हैं। हमारे बीच में एक और भक्त हैं पार्थ कृष्ण प्रभु, प्रभु जी एयरफोर्स से हैं, एयरफोर्स के विंग कमांडर हैं, IIT से इंजीनियरिंग करा हुआ है, इतना होने के बाद में भी आपके गांव में पर्चियां कलेक्ट करने में इनको शर्म नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये अपने लिए नहीं कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, ठाकुर जी के लिए कर रहे हैं। ये तपस्या है, धूप में खड़े होकर के आपके लिए सेवा करने को तत्पर है। जिन भक्तों ने इसका आयोजन किया है उन सब भक्तों को, निरंजन प्रभु, जितेंद्र प्रभु, जितेंद्र प्रभु का परिवार, हमारे दीपक प्रभु, अर्चना माता जी, राधा रूपा माता जी, सभी भक्त सेवा में हैं, सभी भक्तों के सहयोग से ये कार्यक्रम हो पाया है। ये तपस्या है कि भगवान की सेवा के लिए क्या करें, अपना सब कुछ अर्पित करें। तो यज्ञ दान तपह कर्मा ना त्याजे कर्मम एव ततः, इन तीन कर्मों को किसको नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो ग्रस्त हो, चाहे वनप्रस्थ हो, चाहे सन्यासी भी हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, सबको ये तीन काम हमेशा करने चाहिए। अगर ये तीन काम करेंगे तो आपका जीवन कैसा होगा, मंगलमय होगा। ठीक है, तो हम यहीं पर कथा को विराम देंगे। हाँ, अमन प्रभु कहाँ है? अमन प्रभु को बुला सकते हैं, आरती करेंगे और कीर्तन होगा। और किसी का कोई प्रश्न हो तो अभी वो पूछ सकते हैं हमसे। किसी का कोई प्रश्न है?